نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے رمضان ربیع قلبی، رمضان میرے دل کی بہار، اس سلسلے کا آج ہمارا دوسرا دن ہے. آج کا ہمارا جو گول ہے، جو ہدف ہے، سب سے پہلے بیوٹی ٹپ اور اس کے بعد پھر آج کی دعا، ہدایت کی دعا، اور اس کے بعد پھر دل کے بگاڑ یعنی بگڑے ہوئے دل، وہ دل کے جن کے اندر ہدایت کا پانی نہیں جاتا، آج ہم اس کا پہلا پارٹ کریں گے. اور یہ ٹاپک ہم دو دن میں کریں گے انشاءاللہ. آج ہم چھ ایسے دلوں سے اپنا تعلق جوڑیں گے کہ جن کو ہم نے جاننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کوئی ایسی بات جو دوسروں میں ہمیں دکھے اس کو ہائی لائٹ کیے بغیر اپنی کمیوں بیشیوں کو دیکھنا ہے. تو چلتے ہیں رمضان ربیع قلبی. ہم نے کل ایک حدیث دیکھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، ہے بھی آف کورس، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو. مراد یہ کہ آپ خوبصورت ہیں یا آپ کی شکل واجبی ہے، وہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا اخلاص ہے اور کتنا حسن نیت ہے. اس کو پڑھنے کے بعد کیا آپ نے کچھ سوچا؟ اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا؟ ہمارے دلوں سے، ذہنوں میں سے یہ خیال آج نکالنا ہے کہ میں کیسی لگتی ہوں، ہاؤ آئی لکس لائک. آج لوگ ظاہر میں کھو گئے اور یہ ایک ایسا کلچر بن گیا کہ جس نے آج ہمیں سب کو ایک ایسی دنیا میں ڈال دیا کہ جس کے بعد ہم واقعی محسوس نہیں کر پاتے، لیکن غیر محسوس طریقوں سے ہم مادہ پرست ہو گئے. تو اس حدیث پہ یقیناً آپ نے بھی غور کیا ہوگا، میں بھی کر رہی ہوں اور اس وقت آپ کو بھی غور و فکر کا طریقہ سکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کیا حقیقت میں ہم صرف شکل و صورت میں تو نہیں کھو گئے. سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں نہیں دیکھتا ہمارے جسموں اور ہماری شکلوں کو؟ اس لیے کہ وہ اس نے بنائی. اپنی بنائی ہوئی چیز کا تو اندر کھاتا بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا ڈالا، کیا نکالا، کیسے گوندا، کیسے بنا، کیسے سیا. امپریس تو ہمیشہ انسان کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ جن کو کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے بارے میں کبھی جانا نہ ہو. ہاں، لیکن دلوں کو اللہ کیوں دیکھتا ہے؟ ایک روایت میں ساتھ اعمال کی بھی بات ہے اور دلوں کی. اس لیے کہ یہ بندے کو کمانے پڑتے ہیں، یہ ہمارے کسب ہیں، یہ ہماری کمائیاں ہیں. ہم ان کسب اور کمائیوں میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپائیں گے، کل اپنے مالک کی نظروں میں اتنا ہی جچیں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہماری کل کی اسٹڈی ٹپ تھی کہ اپنی سوچوں کی حفاظت کریں، بیوٹیفائی یور تھاٹس، پے اٹینشن ٹو یور تھاٹس. کیا آپ نے اس پہ غور کیا؟ آپ کو اس میں سے کیا دکھا؟ اپنے لیے اگر آپ اس میں سے کچھ عمل کے نقطے لے سکے ہوں گے تو یقیناً آپ نے کچھ بہت ساری سوچوں کو اپنے سے دور کیا ہوگا. اور اگر کل میں آپ کو نہیں دے سکی تو میں دینا چاہوں گی کہ ہم بعض دفعہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رہ جاتی بیکار قسم کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آنے لگتی ہیں. ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، فلاں ایسا، فلاں ویسا. یعنی سوچوں کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، کہ آپ جتنا زیادہ کسی کے بارے میں نگیٹو سوچیں گے آپ اتنے نگیٹو ہو جائیں گے. پازیٹیو سوچیں پازیٹیوٹی دیتی ہیں، نگیٹو سوچیں نگیٹیوٹی دیتی ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ کسی کے بارے میں بھی غلط مت سوچیں. اور یہ آپ کا رمضان آپ کے دل کو ایسے کر دے کرسٹل کلیئر. ابھی بڑے جالے ہیں، ابھی ہمارے دل پر بڑے پردے ہیں، ابھی ہم نے اپنی سوچوں پہ اتنی باریک باریک قسم کی چھوٹی چھوٹی تاریں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہمیں وہ اللہ کا کلام اور اللہ کا وہ نور نہیں دکھتا. آپ دیکھیے کہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل نور ہی کا مشکات، उसके नूर की मिसाल तो मिश्कात की तरह है, और फिर मसल नूर ही का मिश्कात, और उसके आगे ही अल्लाह ने एक ईमान वाले बंदे की बात जो कर दी, उससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहान तआला एक इंसान को कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इन सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र की दावत देते हैं। आपने मैंने अपने दिल को साफ़ करना है। दिल को साफ़ करने का तरीका सोचें साफ़ कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप घर साफ़ देखना चाहते हैं तो क्या आप वहाँ जाकर कुछ डेकोरेशंस लगा देंगे? लिखिए एक मिसाल। डेकोरेशन पीसेस लगाने से पहले दीवार को झाड़ा पहुंचा जाता है, उसके ऊपर से जाले हटाए जाते हैं, वरना क्या होगा? गंदी दीवार के ऊपर अगर आप तस्वीर लगाएंगे ना, तो वो तस्वीर भी खूबसूरत नहीं लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से ये मामला होता है कि जब हमारे दिल के अंदर गंदगी होती है ना, तो जो हम इबादत करते हैं या हम कोई नेकियों के फूल बूटे लगाना चाहते हैं, वो सारे भी नहीं सजते। तो अब रमज़ान में चूंकि बहुत सारी नेकियां करनी है, बोलिए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसका मौका भी दे और इसकी तौफीक भी दे, तो उससे पहले दिल की दीवारों को धोना है। और पहली चीज़ जो हमने सीख ली वो क्या था कि अपनी सोचों की हिफाजत करनी है, गंदी सोच, गंदी बात, गंदी चीज़ नहीं लानी इस दिल पर। और उसका नतीजा क्या होगा जो हमने देखा था? अखलाक के फूल खिलेंगे। आपके मेरे दामन में इतने अखलाक के फूल खिल जाए इस रमज़ान में और अभी से लेके के फूलों की क्यारियां और पूरी पूरी नर्सरियां बन जाएं। आपका अखलाक लोगों को बुलाए कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। हमें ये तो नहीं पता कि ये नमाज कितनी अच्छी पढ़ते हैं, इनके रोज़े कैसे हैं। देखिए, मेरी आपकी इनफरादी इबादत जो है ना, वो हमारे अपने लिए होती हैं। हम जितना ज़्यादा अपने लिए इन चीज़ों को लेते हैं, हमें उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है, लेकिन जो दूसरों को मिलता है वो तो हमारा अखलाक मिलता है। आप सारी रात तहज्जुद के नैया से खड़े रहें, किसी को क्या लगे? लेकिन कोई आए और आप उससे सीधे मुंह बात ना करें तो क्या होगा? सारी नमाजें ख़राब हो जाएंगी। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि लोग फिर बदनाम करते हैं दीन को। और लोगों को तो बहाना चाहिए, वो कहेंगे दीन वाले होते ही ऐसे। अच्छा, कोई कितना भी बुरा हो जाए, लोग कहेंगे इट्स ओके, ऐसे ही होता है। ज़रा सा आपका दीन के साथ ताल्लुक जुड़े और फिर आप बुरे बन के देखिए, आप नहीं दूसरे दीन को बुरा कहेंगे। तो लिहाजा इसी पे रहते हुए आज की अगली टिप लिखिए जो आपको मुझे लेनी है, और फिर हम उसमें से कुछ अमल के नुक्ते लेंगे। आज के दिन की टिप, यानी टुडेज ब्यूटी टिप, कुछ भी कह लीजिए, जिस चीज़ पे आपका दिल जमे और जिस चीज़ को आप ले सकें, वो क्या है? रिमेंबर द गुड इन अदर्स एंड एक्सपीरियंस अल्लाहस नेम अशकूर। दूसरों में अच्छी चीज़ें ढूंढिए, दूसरों की अच्छी बातें याद कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए और सोचिए कि अल्लाह कैसा अशकूर है, अल्लाह सुबहान ताला कैसे मेरे साथ इस तरह का मामला फरमाता है कि मैं जिसके बाद उसके मामले में मैं क्या हूँ। जब अल्लाह ताला बंदों की छोटी छोटी चीज़ों की इतनी केयर करे, इतना ख्याल करे, तो फिर मेरा आपका तो क्या हाल होगा। होता क्या है कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि लोग भी इंसान हैं। कभी कभी होता क्या है कि आप लोगों के अंदर से एक फूल चुनने की बजाय कांटे चुनने लगते हैं। तो चंद जेम्स नोट कीजिए। पहली बात कि अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। अल्लाह सुबहान तआला की सिफत अशकूर को याद कीजिए, क्योंकि वो हमारे आपके छोटे छोटे आमाल की कदर करता है। वो आपके मेरे छोटे छोटे आमाल को देखता है। सच बताइए, कल रात जो नमाज़ पढ़ी थी वो इस काबिल थी कि कबूल हो? आज जो नमाज़ अदा की फजर में, क्या वो काबिल थी? तो जब उसने आपकी मेरी चीज़ों को अपने हाथ में रख लिया, तो फिर मुझे आपको दूसरों में क्यों बहुत कुछ दिखना है? फिर इसी तरह हमारी नीयत, हमारे जज्बात और हमारे सब्र की भी वो रब ही कदर करता है। और वो खुद कहते हैं वलैन शकर तुम लाजीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें और ज्यादा दूंगा। अगर तुम अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जितना तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमत बढ़ती जाएगी। और हकीकत यह है कि हम दुनिया में इंसानों की जब कदरदानी करते हैं, जब हम इंसानों के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो हमारी कदरदानी होती है। आप किसी की पकी हुई दाल की तारीफ करें, गोया कि आपने हर दफा की दाल में अपना हिस्सा डाल लिया, वो कहेगा इनको अच्छी लगी थी, मैं दे देती हूँ, मैं ले जाती हूँ। और अगर आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम तो खाते ही नहीं, मेरे बच्चे नहीं खाते किसी के घर का, और आप 2 4 दिन के बाद जाकर देखें तो आपको अपनी दोस्त के घर में बाहर पड़ी हुई वो पतीली दिखे जो आपने बड़े प्यार से बनाकर भेजा खाना, अगली दफ़ा देंगे? तो लिखिए खुश रहने का राज, और वो चीज़ जिसको इंसान भी पसंद करे और अल्लाह सुबहाना तआला भी पसंद करे, वो क्या है? कदरदान बनिए। लोगों, जिसने कभी अपने मोहसिन का हक अदा ना किया, याद रखिए वो कभी इंसान खुश नहीं रहेगा। मोहसिनों में सबसे बड़ी हस्ती तो अल्लाह की है, फिर माँ बाप हैं, फिर दुनिया में हर वो इंसान जिसने हमें एक एक लम्हे के साथ परवान चढ़ाया। हमारे अपने लोगों को देख लीजिए, स्कूलों में बच्चों को टीचर्स जो पढ़ाते हैं, चाहे वो उर्दू सिखाएं, चाहे साइंस सिखाएं, कुछ भी सिखाएं, वो अल्लाह सुबहाना ताला की हस्ती है उसकी, लिहाजा आपने मैंने भी उसी को अपने सामने रखना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि आप वाकई खूबसूरत बनना चाहते हैं तो कुछ और चीज़ें मुहासवा कीजिए कि हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होता है, मैं दूसरों के साथ कैसे डील करती हूँ। हम बाज़ दफ़ा लोगों से चाहते हैं वो हमारे साथ बड़े अच्छे हों, लेकिन हमने कभी अपने दामन में झांक कर नहीं देखा। फिर इसी तरह दूसरों की खैर और भलाई जब याद करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा कि जिसके अंदर झांक कर आप अपनी भी इसलाह कर सकें। फिर इसी तरह एक और चीज़ जिसमें आप खूबसूरती अपने अंदर पाएंगे, वो क्या है कि अगर कभी गुस्सा आ जाए तो मुश्तहिल ना हो। गुस्सा आग है, और आग बगोला होना आपको बहुत ही बदशक्ल बना देगा। दिल जल जाता है इंसान का ऐसी चीज़ों में। और एक चीज़ इसी में याद रखिए कि लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखें। हम दिल से अंदर तक मशकूर होते हैं, लेकिन मुंह से कहते हैं हाँ क्यों के, खाम खा सर पे चढ़ जाएंगे, लो अब इतनी क्या बात है और इतनी क्या बात है। इसी तरह से आप महसूस करके देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए थैंकफुल होंगे, लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। और फिर आखिरी बात जिसमें आज की इस ब्यूटी टिप को सम अप करूँगी, वो क्या कि लोगों की और रिश्तों की कदर कीजिए। आप अपने फ़ोन की कदर करते हैं, हर वक्त सीने से लगाए रखें, हाथ में रखें, ऑक्सीजन मास्क बना लें, लेकिन अल्लाह ना करे दिल का दौरा पड़े तो फ़ोन काम नहीं आएगा उस वक्त। इसी तरह से आप देखिए कि हम आज मशीनों में खो गए, इंसान पीछे रह गए। अपने आप को हमेशा इस चीज़ के साथ जोड़ के रखा करें कि मैंने इंसान दोस्त बनना है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में इतने अहम होते हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगाते, और जब वो चले जाते हैं फिर आपको कदर आती है। और कभी-कभी तो खून के रिश्तों में हम ये मामला कर देते हैं कि कैसे ये होगा और क्या होगा और क्या सारी चीज़ें, तो आपने इंसानों की कदर करनी है। एक बहुत खूबसूरत वॉज हो सजा संवरा, वो टूट जाए तो इतना नुकसान नहीं होता, किसी का दिल टूट गया तो बड़ी बात है। तो आपने मैंने इंशाल्लाह अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि ऐ मेरे मालिक मुझे इंसानों की कदर करने की तौफीक दे। तो फिर सम अप कर देती हूँ आज की ब्यूटी टिप, बल्कि आज की ब्यूटी टिप्स को, लोगों की अच्छी बातों को याद रखिए और अल्लाह के अशकूर होने को जहन में रखे। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हमारे टूटे फूटे आमाल की इसलाह फरमा दे और हमारी कदरदानी फरमा दे। तो ये थी आज की टिप, अब चलते हैं आज की दुआ पे। हर दिन बस हम एक ही दुआ सीखेंगे और आप देखेंगे कि वो दुआ हमारी बहुत सारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनेगी। तो हमने नियत की है रमदान को रबी या कल्बी बनाने की, मगर कैसे? तो ज़रा सोचिए, रमज़ान मेरे लिए दिल की बहार बन जाए, ये कैसे होगा? एक तरफ हम इंसानों के साथ अपने मामला दुरुस्त करते रहेंगे, अपने आप को संवारते रहेंगे डेली टिप्स के साथ, और इसी तरह से दूसरी तरफ हम फिर दुआएं सीखेंगे और कुरान पढ़ेंगे। तो कहिए कुरान मेरे दिल की बहार बन रहा, बनेगा इंशाल्लाह। जब सुबह शाम रात दिन आपका इस किताब के साथ मामला चलेगा, तो आप महसूस करेंगे कि ये कुरान हकीकत में आपका बेहतरीन दोस्त बनता जा रहा है। ये वो कुरान है ये वो किताब है जो आपको अपने दोस्तों से ज़्यादा प्यारी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आप फिर इसकी बहारों को ना सिर्फ यह कि ख़ुद लूटेंगे बल्कि दूसरों को भी देंगे। तो हमारी आज की दुआ, वो दुआ जो आप और मैं सबसे ज़्यादा मांगते हैं, शुरू से मांगते रहे, और वो दुआ जिसको मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा बेशौरेपन में मांगते हैं। हम वो मांगते हैं और जो हमें मिल भी जाए तो हमें पता भी नहीं होता, और जिस दिन पता लग गया अल्लाह रहम करे शायद मांगना ही छोड़ दें, बिलीव मी। क्योंकि अमूमन लोगों का रवैया क्या होता है कि गॉड गिव मी गाइडेंस बट नॉट सून, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे मगर अभी ना दे, 40 साल के बाद देना, शादी के बाद देना, और मुझे इस तरह से करना और वैसे करना, क्योंकि हम हिदायत मांगते हुए डरते हैं। तो सूरत अल फातिहा जो दिन में कम से कम 17 बार तो फ़राइज़ की सूरत में हमारे हमारी ज़ुबान पे होती है, और इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो फिर और उसकी दुआ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। आज हम इस दुआ में डूब जाएंगे, देखिएगा इतना डूबेंगे कि जब हमारा वक्त ख़त्म होने वाला होगा तो फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है। फीकी चाय पीने वालों को मीठी चाय का टेस्ट भूल ही जाता है। आज हमने कुरान और हदीस को बस एक अजर और सवाब की चीज़ समझ लिया, लेकिन इसके अंदर से हमारे लिए वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं वो कम होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इस दुआ में हमें क्या मिलेगा, हम इसको देखेंगे। आइए सबसे पहले इसका लफ्जी तर्जुमा, इहदीना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे की। एक ही दफ़ा देखिए बामुहावरा तर्जुमा, इहदीना सिरातल मुस्तकीम हमको सीधे रास्ते पर चला, हमें गाइड कर दे। जब आप और मैं ये दुआ मांगते हैं तो उसके बाद वाकई अल्लाह सुब्हान तआला जब ये दुआ पूरी करता है तो क्या होता है, अब हम चलेंगे एक एक लफ्ज़ पे। इहदीना हमें हिदायत दे, हम इसमें दो लफ्ज़ इकट्ठे बोल रहे हैं, हिदायत और उसका भी फ़ेले अमर, और ना हमें, किसको हिदायत चाहिए, हमको चाहिए। हिदायत का लफ्ज़ हा दाल या से है। हिदायत कहते हैं लुत्फ़ो करम के साथ किसी की रहनुमाई करने को, प्यार से, मोहब्बत से, अपना समझकर किसी को गाइड करना। कौन करता है ऐसे? माँ करती है, और कौन करता है? बाप करते हैं, और कौन करते हैं? रसूलों ने किया, पैगंबरों ने किया, अल्लाह वालों ने किया, उस्तादों ने किया। तो प्यार और मोहब्बत से किसी को गाइड करना, इसको हिदायत कहते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता नोट कीजिए आप में से वो साथी जो बिल्कुल नए नए इस सफ़र में शामिल हो रहे हैं, कि हिदायत और हदिया जिसको आप गिफ्ट कहते हैं और हिदायत को हम गाइडेंस कहते हैं, दोनों का एक ही रूट है, हा दालिया। तो हिदायत एक हदिया है, गाइडेंस इज द गिफ्ट, गाइडेंस इज द गिफ्ट। महसूस करते हैं, आपको कोई गिफ्ट मिले तो आपको कैसा लगता है? दिल खिल जाता है, सस्पेंस होता है, मोहब्बत लगती है। तहादु तहाबु, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि तोहफे दो मोहब्बत बढ़े, आपस में दो भी तो लो भी, अगर लेते हो तो दो भी, तो मोहब्बत बढ़ेगी ना। तो हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ जाती है कब? जब हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला से गाइडेंस लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को चार तरीके से हिदायत दी है। लिखिए, अल्लाह सुबहाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा और उनसे एक ख़ता हो गई, तो उसकी फौरन ही तलाफ़ी करते हुए उन्होंने रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन कहा, तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, फताब अल्लाह, कबूल कर दिया। तो क्या कहा, आप जाइए वापस। उन्होंने अपनी ज़ुबान में सवाल किया होगा कि अल्लाह ताला जब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई तो जन्नत वापस दे दीजिए, जिसमें से निकाल दिया गया। तो जवाब क्या मिला कि अब नहीं, फ़ैमयातियन्ना, अब जब कभी आएगी मेरी तरफ़ से हिदायत तुम्हारे पास, मैं अंबिया भेजूंगा, मैं किताबें भेजूंगा और वो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाएंगे। तो फिर जो उसकी पैरवी करेगा, फमन तभी या खुदा या फला खौफ अलैहिम वला हुम यहसनून। तो हिदायत का वादा अल्लाह ने हज़रत आदम के साथ ही दिया था। लिखिए चार किस्म की हिदायतें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रखी। एक वो हिदायत है जो हर इंसान की ज़ाती ज़रूरियात के लिए होती है। मसलन मछली के बच्चे को पैदा होते ही तैरना कौन सिखाता है? अल्लाह ताला। ये है पहली हिदायत, यानी वो हिदायत जो अक्ल और फतानत और मुआरफ़ ज़रूरिया यानी दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अता की जाती है। परिंदे को उड़ना सिखाना, मछली को तैरना सिखाना, ये सब को मिलती है। पैदा होता बच्चा कौन सिखाता है दूध पियो? अल्लाह ताला कहते हैं वहदई ना हुन नजदैन। हम दुनिया में आते ही दो रास्ते दिखा देते हैं। तो एक बच्चा जब माँ से दूध ले लेता है कौन सिखाता है? कौन सा कोर्स हुआ नर्सिंग का? पेट में दर्द है तो रोना है, कान में दर्द है तो रोना है। ये है पहली हिदायत। ये इंसान के बच्चे के साथ भी है और ये हैवानात के साथ भी है और दूसरों के साथ भी है। ये हिदायत है पहली। इसमें सब कॉमन है। आज आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, तो दूसरे जो किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा हुए अब वो क्या करें? इसका जवाब आज की इस नशिस्त के एंड तक आपको मिल चुका होगा इंशाल्लाह ताला। चलिए पहली किस्म। दूसरी किस्म होती है जो अंबिया कराम के ज़रिए भेजी गई, वही। यानी आप इसको वहश अरबी में कहेंगे तो वहश और उर्दू में कहेंगे तो वही। यानी अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजे, किताबें भेजीं और उन्होंने इंसानों को राहे निजात की तरफ दावत दी। जितना ज़्यादा अल्लाह के नबी किसी कौम की तरफ गए उतनी उन पे हुज्जतें तमाम होती गईं और उनको हर चीज़ की बात खोल के बता दी गई। जिन्होंने नबी की पुकार पे लब्बैक कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह ने उनसे वादा कर लिया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिन्होंने इनकार किया तो फिर उनको रसूल के इनकार पे तो हलाक कर दिया गया, जैसे कौम नूह डुबो दी गई। इसी तरह कौम सालेह अलैहिस्सलाम और कौम आद और बाकी कौमों को तबाह किया गया। तो गोया के अंबिया कराम को भेजकर हिदायत की दूसरी किस्म अलग रखी गई। इसी तरह से याद रखिए कि एक तीसरी हिदायत होती है जिसको तौफीक कहते हैं, ख़ास तौफीक। ये हिदायत याफ्ता लोगों को अता होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया की पुकार पे लब्बैक कहा। नबी तो सबके पास आए जो भी उस दौर के लोग थे, लेकिन तौफीक ना मिली सबको। लोग फ़ायदा नहीं उठाते अंबिया कराम से और आज भी लोग हिदायत वाली बात से फ़ायदा कम उठाते हैं और दूसरी बातों से फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। इंसानों को ऐसे लगता है कि जैसे लोग लेट डाउन करते हैं और वो सोचते हैं कि छोड़ो इनकी क्या बात है। तो वो लोग जो नबियों की बात सुनकर चल पड़े, उनको तौफीक मिल गई, वो तौफीक के दर्जे पे आते हैं। और फिर एक चौथा दर्जा हिदायत, क्या कि आखरत में जन्नत मिल जाए। यानी चलते 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 इस दुनिया से गुज़रते गुज़रते एक इंसान जन्नत तक पहुंच जाए। ये दर्जे तय होंगे तो बात बनेगी। फिर इसके अंदर आप देखिए इंसान को अक़ल दी, ये भी एक हिदायत है, इसको भी नोट कीजिएगा। अक़ल क्या है? बंदे को रास्ता दिखाती है किस चीज़ का, क्या अच्छा है क्या बुरा। आप देखिए कि कोई शख्स अपने आप को मुनकर कह दे, मुसलमान कह दे, कुछ भी कह दे, अंदर से सब एक ही जैसे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती, अल्लाह तआला की ज़ात हर बंदे को अक़ल देती है। घास अगर एक मुसलमान को सबस दिखता है तो दूसरे को भी सही दिखता है, लेकिन मुसलमान उस घास को देखकर घास पैदा करने वाले तक पहुंच जाता है। इसके बरक्स दूसरी तरफ मामला दूसरा होता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि एक इंसान इस पे गौर करे। इसमें भी सब बराबर है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा होते ही सबको एक जैसी हिदायत, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब एक जैसे हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजे अपने दौर के लोगों के लिए, सब बराबर थे। हाँ, रह गया आज के दौर के गैर मुस्लिमों का मामला, जो किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा किए गए। तो याद रखिए अल्लाह ने एक हिदायत जो हर एक को दी है, वो है वादा अलस्त, अलस्त बिरब्बिकुम। लोगों को ये बताकर कि दुनिया में जाओगे तो तुम रब को रब मानोगे, ये बनाकर ये करके अल्लाह ने हमारी फितरत में गूंद दिया, आप कह लीजिए कि हमारे डाटा में फीड कर दिया, इंडल्ज कर दिया, ये भी सब में बराबर है। अब अगर आज कुछ लोगों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त पैगाम नहीं पहुंचा, तो वो पैगाम जाना था इनडायरेक्टली और वो उम्मत मुस्लिमा ने देना था। तो लिहाजा अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। कायनात को देखकर हिदायत मिलती है, कुरान को कहते हैं कुरानी हिदायत, तो कायनात को देखकर कहते हैं कौनी हिदायत, इसमें सब बराबर है। सूरज चांद को देखिए, सितारों को देखिए, कुरान बार बार दावत देता है इन्ना फी खल्क़ समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ़ लैली व नहार, ये सारा कुछ क्या बताता है कि देखो रब को पहचानो, सुबह शाम को देखो, चढ़ते सूरज को देखो, डूबते चांद को देखो, तुम्हें रब दिखेगा। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हिदायत के एतबार से सारी ही चीज़ें समझा दी। सवाल यह कि लफ्ज़ हिदायत के लिए कुरान पाक में क्या एक ही लफ्ज़ है और वो हिदायत है? तो नहीं, कुरान पाक में हिदायत के नाते से तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक है हुदा, जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा इसी की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल जिसको इहतदा कहते हैं, यानी बाब इफ्तियाल में चला जाता है यही लफ्ज़, और तीसरा है रुश्त या राशदा। थोड़ा सा फ़र्क देखिएगा, इहतदा जब होते हैं ना, यानी जब हुदा लफ्ज़ के अंदर ता लग जाती है, तो इसका मानी होता है लुत्फ़ो करम के साथ किसी की रहनुमाई करना, भलाई का रास्ता दिखाना। इसकी ज़िद होती है दल्ला या अदल्ला, खुद भटकना या दूसरों को भटकाना, भलाई की राह को गुम कर देना या ओझल कर देना। ठीक है, तो हिदायत के मुकाबले में दलालत आ जाता है। ठीक है, अब जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको फिर इसमें वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं जो कि हम देखते हैं तीन किस्म, जिसका भी हमने खुलासा किया। आप इसको ज़रा दूसरे लफ्ज़ों में समझ लीजिए, एक फितरी रहनुमाई जो अल्लाह ने हर चीज़ में डाल दी, बच्चे का पैदा होते ही अपनी माँ से फ़ायदा उठाना, और इसका जिक्र सूरत तौहा की आयत नंबर 50 में है, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शयइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को इसकी शक्लो सूरत बख्शी फिर राह दिखलाई। ठीक है, इसी हिदायत का दूसरा दर्जा क्या है? इंसान के जहन का रुख जलालत यानी दलालत से हिदायत की तरफ या कुफर से इस्लाम की तरफ, और तीसरी फॉर्म है नाफरमानी से अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ मोड़ना। ये काम अंबिया कराम, रसूल और दूसरे नेक लोगों के तरीके से, उनके वास्ते से, उनकी वसातत से होता रहा, मगर इस रुख को मोड़ना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इसकी दलील है कुरान पाक में, इन नकला तहदी मना बबता वला किन अल्लाह यहदी मन यशा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे दोस्त रखते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत करता है। और इस पे अबू तालिब की मिसाल बहुत सारे लोगों को मालूम है। तीसरी चीज़ जो हिदायत ही के लफ्ज़ के साथ है वो क्या है कि जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी या इस्लाम में आ जाएं, इन्हें सीधी राह दिखलाना और राह रास्त पर चलाते जाना। अव्वल दौर में तो ये जिम्मेदारी अम्बिया और रसूल की थी, आज के दौर में इसमें मुसलमान शरीक हो चुके हैं, फिर भी इस काम में अल्लाह की मशीयत होती है। इसकी भी दलील है, अफ अंत तहदिल उमया वलौ कानु ला युबसिरून, क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचे कुछ भी देखते भालते ना हो? और इसी तरह से एक और जगह आता है, व इन्नकल तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सीधा रास्ता ही दिखाते हैं। और जब इसको आप इहतदा हिदायत पाने के मानों में लेते हैं, तो फ़मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी, जो कोई हिदायत हासिल करता है तो अपने ही लिए करता है। चलिए, ये तो सारे खेल थे हिदायत लफ्ज़ के। दूसरा लफ्ज़ देखिएगा, रुश्त, राशदा कहते हैं, रुश्त उसी से है। इसकी ज़िद होती है गवा, फिर बोलती हूँ, हिदायत की ज़िद है जलालत, दलौल दलल, भटकना, पाँव का फिसलना, जैसे टंग स्लिप ऐसे फुट स्लिप। इसके बरक्स रुश्त जब आता है तो इसकी ज़िद होती गवाह, जो शख्स राह रास्त पर आ जाए और नेक चलन भी इख्तियार कर ले। समझिएगा, आप इसको कह सकते हैं राह हक पे बरकरार रहना, ये बहुत बड़ी बात और इसका फ़र्क दौरे कुरान में इंशाल्लाह 8वें पारे में आप देखेंगे कि कैसे सबील और रुश्द बमुकाबला सबील उल हुदा या हिदायत बमुकाबला गुमराही के। और एक नबी को कौम ने कहा था अलैहिस्सलाम मिनकुम रजुलुर रशीद, रशीद का लफ्ज़ भी आप कह लें इसी से है। तो ख़ुलासा क्या निकला, हिदायत या इहतदा सीधी राह पर गामजन होना होता है, जबकि रशदा उस राह को इख्तियार करने के बाद नेक आदात भी अपनाना और फिर उस पर बाकी भी रहना, ये वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर आप हिदायत को देखते हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में हिदायत पे आते हैं और फिर एंड तक मरते दम तक उसी पे रहते हैं, अल्लाह मुझे और आपको उन्हीं में से कर दे। और अगर उसके बाद अगर आप और मैं इस पे आ चुके हैं तो अल्लाह हमें जमा भी दे, और जितना इस पे जमते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। फिर इसी के बाद आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप और मैं इसकी कोशिश करते जाएंगे उतना हमारा ये अमल बढ़ता जाएगा। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस लफ्ज़ी वज़ाहत के साथ आपके जहन में हिदायत का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन हम अभी चलेंगे अगले लफ्ज़ पे, और वो क्या है, इहदिना दिखा हमको अस्सिरौता रास्ता। अल्लाह सुबहाना ताला से एक बंदा रास्ता मांगता है, और सिरात किसको कहते हैं, सीन रौ त्वा, स्वाद रौता भी है, असल में सीन था, स्वाद मोटी होने की वजह से बदल गई, इसीलिए आप देखेंगे कहीं कहीं लफ्ज़ सीन रौ त्वा भी दिखता है। आसान रास्ते को सिरौत कहते हैं, असल में निगलना, टू स्वॉलो। आप कभी गर्मियों की दोपहर में किसी हाईवे पे तेज़ गाड़ी चलाकर जाएं ना तो आपको लगता है कि सड़क को गाड़ी निगल रही है, तो निगलने की वजह से रास्ते को सिरात कहते हैं। सिरात का लफ्ज़ निगलना, कैसे रास्ते को सिरात क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पे चलने वालों को निगल लेता है, इट लुक लाइक, हालांकि वो कर नहीं रहा होता लेकिन फील होने लग जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से रास्ते के लिए अरबी में बहुत सारे लफ्ज़ हैं, अभी आपको मैं सिर्फ उनका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, और फिर आप देखेंगे कि जब हम अपनी इस दुआ की डिस्क्रिप्शन यानी इसकी तफसील को जानने पे आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ लफ्ज़ सिरात क्यों आ गया। और ये आज आप जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि आपको अपनी नमाज़ों में सूरत अल फातिहा पढ़ने के दौरान इस दुआ को मांगने में मज़ा आ जाएगा। यानी मुझे उम्मीद है और मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अब के बाद जब भी सूरह फातिहा पढ़ें, वो ज़ाहिर है कि अगली नमाज ही होगी ना, और अगली नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो ये दुआ जब मांगे तो ये हमारे दिल की पुकार बन जाए। ऐसा ना हो कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से बातें करते जाएं करते जाएं और हम उससे फ़ायदा ना उठाएं। तो लिखिएगा, बहुत दिलचस्प मालूमात हैं रास्ते के लिए अरबी ज़ुबान में क्या क्या लफ्ज़ हैं, और ये है कुरान का मिजाज। और इस साल दौरे कुरान में इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक वक्त ने गुंजाइश दी हम मुतरादिफात को भी देखें, कम से कम वो ज़रूर बताऊँगी जो उस वक़्त चल रहा होगा, ताकि आप कह सकें कि वल्लाही माला हाज़ा कलामुल बशर, अल्लाह की कसम ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये रब का ही कलाम है और ये रब ही के साथ मामले की चीज़ है। तो रास्ते के लिए अरबी ज़ुबान में सिरात, तरीक, सबील, फज, इमाम, हुदा, नजत, सबब, 8 लफ्ज़ हैं। बताइए आपकी मेरी उर्दू, इंग्लिश और दूसरी ज़बानें क्या इतनी एनरिच्ड हैं कि एक ही लफ्ज़ के लिए 9 मुख्तलिफ लफ्ज़ हों या 8 हों, और ये तो भी इसमें 8 हैं, कई जगह 13-13 लफ्ज़ हैं, 20-20 भी हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा फ़र्क नोट करें, ये सिर्फ़ आपके उस इल्मी ज़ौक की खातिर जो आप हमारी ऑन जो रेगुलर क्लासेज है उसमें लेते हैं। दौरे कुरान में ज़ाहिर है कितना वक्त नहीं होता, लेकिन जो सबीलुल जन्नत कोर्सेज हैं और जो इस साल का भी 2021 का अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, तो उसमें ये अंदाज़ हमारा अल्लाह की रहमत से आपको दिखता है कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया जाता है। तरीक़ किसको कहते हैं, जमा है इसकी तरायक, हर तरह के रास्ते के लिए, यानी कॉमन वर्ड फॉर दी रास्ता, और मादी और मानवी दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा था तो क्या आया, फ़द्रिब लहुम तरीक़न फिल बहरी यबसा, ए मूसा समंदर पर लाठी मारकर इनके लिए खुश्क रास्ता बनाइए। यानी इसमें वाकई रास्ता बना था, जिसको आप कह सकते हैं रोड, जिसको आप कह सकते हैं ऑन साइट पे कोई चीज़ दिखे, लेकिन कुछ वर्चुअल चीज़ें होती हैं, वर्बल चीज़ें होती हैं, उसको मन भी कहते हैं। उसके लिए क्या आता है, वला ली यहदियन्नहुम तरीक अनिला तरीक जहन्नम, और ना ही अल्लाह इनको राह दिखाएगा मगर जहन्नम की राह। आप जहन्नम की राह क्या है, बुरे काम, शिर्क, कुफर, तो बात समझ गए होंगे कि आम रास्ते के लिए भी आता है और किसी मानवी यानी जस्ट एग्जेम्पलरी, यहाँ कोई सड़क नहीं है कि जिस पे चलने वाला एंड पे जहन्नम में पहुंच जाए, मुराद बुरे तरीके, ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ सिरात, जो इस वक्त है, ज़रा सा इसके बारे में जानकर खुश होइएगा। सिरात कहते हैं लंबी और तेज़ धार तलवार को, लंबी और तेज़ धार तलवार, और वो रास्ता जो जहन्नुम को अबूर करने के लिए बनाया जाएगा, इसे आम तौर पर पुल सरात कहा जाता है। और उसकी भी वही सिफत है, अगर आप हदीस पढ़ें पुल सरात के बारे में, तो वो तलवार से तेज़ होगी, तलवार से तेज़ होगा, बाल से बारीक होगा। अब ज़रा से लिखिए, और आप इस वक्त आप अल्लाहुम्मा इहदिन, जिसका हम कहते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस दुआ को महसूस कीजिए और इसको मांगते वक्त अपने दिल की धड़कनों को तेज़ होता हुआ देखें। हम अल्लाह ताला से जब इस रास्ते की बात करते हैं तो क्या मुराद है, सिरात वो रास्ता है जो इंतहाई एहतियात के साथ तय करना पड़े, बड़े शऊर के साथ, कांपते हुए नपे तुले कदमों के साथ जिस रास्ते से गुजरें उसको सिरात कहते हैं। और सिरात कहते हैं उस रास्ते को जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खतरात हों, और इसी एहतियात जिसके साथ सिरात से गुजरते हैं, इसका नाम तकवा है। आप कह सकते हैं कि सिरात के लफ्ज़ से समझ आ गया कि तकवे के बगैर इस रास्ते से बंदा गुजर नहीं सकता। और इसी तरह आप देखते हैं, जैसे पुल सरात की बात है, आप अहादीस में पढ़ेंगे कि कैसे कयामत के दिन लोग गुजरेंगे, और जन्नत में जाने का और जहन्नम में जाने का एक ही रास्ता है, जहन्नम नीचे है, जन्नत उसके आगे है, पुल सरात ही से फैसले हो जाएंगे कौन कट के नीचे गिरता है और कौन कांपता, लुढ़कता फुड़कता, या कौन तेज़ हवाओं की तरह चलता हुआ पहुंच गया। तो लिखिए, वो आखिरत की पुल सरात है, ये दुनिया का सरात है। हिदायत का रास्ता आसान नहीं है। हम अल्लाह से ये नहीं कहते कि हमें आसान रास्ता दे, क्योंकि अभी सारे लफ्ज़ सुन लीजिए तो आपको फिर मैं इस सब के ऊपर एक छोटा सा नोट दे दूंगी। अभी सिर्फ आप लफ्ज़ी वजाहत पे फोकस कीजिए। जिस तरह हमने देखा कि तरीक का लफ्ज़ असल रास्ते पे भी आता है और मानवी पे भी आता है, बिल्कुल इसी तरह से सिरात भी मादी रास्ते, यानी जिसको आप वाकई रोड कहें, हाईवे कहें, गली कहें, घाटा कहें, जो भी कहें, उसके लिए भी आता है और मानवी तौर पे भी आता है। मानवी तौर पे जब आएगा तो मफहूम हिदायत का रास्ता होता है। ले लीजिए इसकी मिसालें भी, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, ये कौन सा रास्ता है, मानवी है। कोई एक रास्ता तो ऐसा नहीं है जिस पे चलते हुए आप जन्नत में पहुंच जाएं, और आपके कोर्सेज का नाम सबीलुल जन्ना, तो सबीलुल जन्ना का नाम आपको बता देता है कि ये रास्ता एक मानवी रास्ता है ना। और इसी तरह अगर मादी रास्ते, यानी जिसको रोड के मानों में कहेंगे, जब आप रोड के मानों में इसको लेते हैं तो एक कौम का तذकरा है, वला तक़ुदू बिकुल्ली सिरातिन तुवेदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है इसे तुम डराते धमकाते हो और अल्लाह की राह से रोकते हो। तो गोया कि इसमें भी दोनों मानी आ गए। तीसरा लफ्ज़ ले लीजिए सबील, सुबुल से, हर वो रास्ता जिस पर सहूलत से चला जाए। आप कुरान में कसरत से पढ़ते हैं इब्न सबील, सबील का रास्ता, यानी इब्न सबील कहते हैं मुसाफिर को, रास्तों का बेटा, ठीक है। आप देखिए कि आबिर सबील का लफ्ज़ भी आता है सूरत निसा में पढ़ते हैं, इस तरह सूरत बकरा में आता है 177 में, सबील राहगीर को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सुबुल इसकी जमा होती है, और सबील कहते हैं खुली सड़क को। अरब लोग कहते हैं असबलुत तरीक, रास्ते का बहुत आमदो रफ्त वाला होना, हम कहते हैं ना कंजस्टेड है, रश है, स्टक्ड है, उसके लिए लफ्ज़ आता है। इसी तरह असबलुद दमुल वल मतर, आंसू या बारिश का कसरत से बहना और बरसना, तो फिर सबील कौन सा रास्ता है जहाँ कसरत से आमदोरफ्त होती है? शहद की मक्खी की मिसाल लीजिए सूरत नाहल आयत 69, फसलु की सुबुल रब्बिक ज़ुलुला, और अपने परवरदिगार के साफ रास्तों पर चलती जाओ। तो वहाँ सुबुल से मुराद फितरी रहनुमाई है जो अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर डाल दी है, यानी मक्खी के अंदर जो अल्लाह ने प्रोग्रामिंग की थी उसकी रोशनी में मक्खी चलती जाती है। कहाँ से फूलों में से रस लेना है, कहाँ से नहीं लेना, तो इसका भी फिर इस्तेमाल मानवी रस्तों पे भी और मादी रस्तों पर भी होता है। मसलन वइन्नहा लबिसबील वइन्नहा लबिसबील मुकीम, कौमे लूत की बस्तियों की तरफ इशारा है कि ये तो हाईवे पे थी, बहुत बड़े बड़े रस्तों पर भी थी। तो आप देखिए कि जब अल्लाह सुबहाना ताला ने हिदायत के रास्ते के लिए कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप देखिए कि इस हिदायत के रास्ते के लिए तरीक, सिरात और सबील तीनों ही रास्ते इस्तेमाल किए हैं। और तरीक इस लिहाज से कि ये आम लफ्ज़ है जो हर रास्ते के लिए होता है, सिरात मुश्किल रास्ता है, अवामिर नवाही डूज एंड डोंट्स की हदूद व क़यूद पाबंदियों वाला रास्ता होता है, और सबील उस लिहाज से है कि जो शख्स अज़म के साथ इस रास्ते पे चल खड़ा होता है ना, तो शरीयत ने उसके लिए हर तरह की आसानियों का लिहाज रखा है। और ऐसे लोगों की भी बहुत तादाद है जो इस रास्ते पे चलते हैं। कौन कुर्बान ना जाए अल्लाह के इस कलाम पे। आप और मैं मांगते हैं इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ये तो नहीं कहते कि इहदिना सिरात की बजाय सबील कह दीजिए, आसान रास्ता नहीं हम मांगते, हम सिरात मांगते हैं, क्योंकि असल में इसी में खूबसूरती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम पुल सिरात के ऊपर से गुजरने तक का रास्ता मांगे। फिर इस तरह एक रास्ता था फज, फा जीम जीम, फज्जतुन, दो पहाड़ों के दरमियान कुशादगी को फज्जतुन कहते हैं, और फजवा कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान एक मैदान को। इंग्लिश में कहते हैं वैली, वादी उर्दू में कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फज्जा वो खुला रास्ता जो इस मैदान में से गुजरकर इन दोनों पहाड़ों को मिलाता है, ठीक है? और इसकी जमा क्या आती है? फिजाज। कुरान पाक में मौजूद है, हज के ज़िमन में सूरत हजी है। वाज़िन फिन नास बिल हज या तू करी जालूं व अला कुल्ली दामिर दामिरी या ती नमिन कुल्ली फज्जिन अमीक, और लोगों में हज के लिए निदा कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर जो दूर दराज रास्तों से चले आते हों सवार होकर चले आएं। तो गोया कि आप देखिए कि फज का लफ्ज़ एक मखसूस किस्म के रास्ते के लिए आता है। पांचवा लफ्ज़ है इमाम, इमाम, और इमाम का लफ्ज़ क्या है? पेशवा, और यहाँ मुराद है शाहरा, हाईवेज, बड़ी और खुली सड़क को इमाम कहते हैं। कुरान कहता है फन तकमना मिनहुम व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, पस हमने इनसे बदला ले लिया और वो दोनों बस्तियाँ बड़ी शाहराह पर वाक़े हैं। यानी अगर हम कहते ना कह दिना इमाम अल मुस्तकीम, तो पता क्या मानी बनता? अल्लाह बस बड़ी बड़ी नेकियों के काम दे दे, छोटी नहीं करनी हमने, हालांकि बात इससे बिल्कुल अपोजिट है। फिर इसी तरह से आप देखते जाते हैं, इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह सुबहान ताला किस तरह मुनासिब और ज़रूरत के मुताबिक जो अल्फाज हैं वही इस्तेमाल करते हैं कुरान पाक में। अगला लफ्ज़ लीजिए नजद, नजद बोलें इसको आप, घाटी को कहते हैं। वो रास्ता जो ऊपर बुलंदी की तरफ चढ़ता है और ऊपर से नीचे आता है, हमारी ज़ुबान में इसको पहाड़ी रास्ता कहते हैं। वहदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बा, और इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए गए मगर वो घाटी पर से होकर ना गुजरा। तो क्या पता चला? अल्लाह ताला ने नजद का लफ्ज़ भी कहा। फिर मज़े की बात देखिए कि इहदिनस्सिरात में तो हम हुदन देख चुके, अब यहाँ आपको एक बड़ा खूबसूरत नया नुक्ता दिखेगा, हुदन भी रास्ते को कहते हैं। सिरात तो रास्ते को कहते ही हैं, हुदन जिसकी ज़िद दलालत है, रहनुमाई और राह को कहते हैं। ये कौन सा होता है? अगर किसी भूले भटके इंसान को सही राह मिल जाए तो तो इसे हुदन कहते हैं। इन्नी आनस्तु नारन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है सूरत मरियम सूरत तौहा आयत 10 में, इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन अव अजिदु अलन नारी हुदा, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद इसमें से तुम्हारे लिए अंगारा ले आऊँ या उस आग के मुकाम पर बैठे लोगों से राह मालूम कर सकूँ। तो गोया कि हुदन सिर्फ मानवी रास्ता है इधर, ये भी नोट कीजिए। अगला लफ्ज़ है सबब, जिसकी जमा है असबाब, ज़रिए को कहते हैं। आप कहते हैं ना सबब बन गया, आप आगे मुझे ले गए, सबब बन गया मेरा, हाँ। रस्सी को कहते हैं, और रास्ता, रास्ता और उसे तय करने के वसाइल, जिसको आप सामान्य सफ़र कह सकते हैं। और ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है सूरत अलकहफ़ में, सुम्मा अतबा सबबा, फिर ज़ुल्क़रनैन ने एक और सामान सफ़र सामान यानी एक और सामान सफ़र का किया। और इसी तरह वक़ाल फ़िरऔन या हामान, और फ़िरऔन ने कहा ए हामान, मेरे लिए एक महल तामीर करो ताकि मैं इस पर चढ़कर रास्तों पर पहुंच जाऊं। या हामान उबनी ली सरहल लअल्ली अबलुगुल असबाब। अब मुझे बताइए ज़रा, क्या रास्ते की बात समझ आ गई? कैसे अल्लाह सुबहान तआला ने आपके मेरे लिए कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें खोल के रखी ताकि हम इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करें और इसके बारे में जानें कि अल्लाह सुबहान तआला किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक में हमें सिखाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो खुलासा क्या निकला इतनी लंबी बात का कि अल्लाह ताला ने हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर ये सिखा दिया कि हर तरह का मुश्किल हो के आसान हो हमें वो रास्ता चाहिए। यहाँ तरीक नहीं आया, इमाम नहीं आया, नजद नहीं आया, सबील नहीं आया, फज नहीं आया, सबब नहीं आया, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है। और ऐसी सारी चीज़ों से अपने लिए ये चीज़ भी नोट किया करें कि हिदायत की किताब है, इसीलिए तो इतनी बारीकी है। अगर ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की किताब होती तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। तो अगर हम सिर्फ इसको पढ़ते ही जाएं, बरकत तो मिलेगी, रहमत तो मिलेगी, लेकिन हमने इस साल इंशाल्लाह कुरान को किताब हिदायत बनाना है। पढ़ेंगे भी सही तरह से, लेकिन फिर इसके ऊपर गौर व फिक्र भी करना है। तो रास्ते के लफ्ज़ के बाद अगला लफ्ज़ देखिए हमारी दुआ में, अल-मुस्तकीम। अल-मुस्तकीम 37 टाइम ये वर्ड कुरान पाक में आता है। बाप इस्तिफ़ाल है, काफ वाव मीम से, कौम क़याम क़यामत वही है। इसके मानी होते हैं ख़ते मुस्तकीम की तरह सीधा होना, और तशबीह के तौर पर यह राह हक के को वाज़ह करता है। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो लफ्ज़ हैं वो क्या हैं कि अल्लाह हमें इस्तकामत के साथ सीधे रास्ते पे चलता रहने दे और फिर साबित कदम भी रखना। अब सवाल पैदा होता है कि जब अब सीधे रास्ते और इस्तकामत की बात करते हैं तो क्या इसके लिए कुरान पाक में कोई और भी लफ्ज़ है? तो बिल्कुल है, आज उसकी वजाहत नहीं देती क्योंकि टू मच हो जाएगा आपके लिए, इंशाल्लाह चलते जाएंगे ये सफ़र तो तय होगा। तो आप देखिए कि मुस्तकीम का लफ्ज़ काफ वाव मीम से है, वज़नु बिल्किस्तासिल मुस्तकीम, जब तोलो तो सीधी तराजू के साथ तोलो। फिर इसी तरह से फतमस्सला लहा बशरन सवीया, हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल का बन गया। और इसी तरह से फत्तबेनी अहदिका सिरातन सवीया, तू मेरे साथ हो जैसे मैं आपको सीधी राह पर चलाऊं। इसी तरह लफ्ज़ सवा, सीन वाव या से है, सवा सवीयुन, ये भी इसी के लिए आता है सीधे रहने के लिए। खुजू हु फातिलू इला सवाइल जहीम, हुक्म दिया जाएगा इसको पकड़ो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ। और हज़रत मूसा ही के तस्करे में आता है सूरह कसस में, वलम्मा तवज्जहतिल क़ामदयन क़ाल असा रब्बी यहदियनी सवा सबील, और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताएगा। इसी तरह कस्द, सीधे के लिए लफ्ज़ कस्द भी आता है, वाल्लाही कसदु सबील व मिनहा जायर। और सीधा रास्ता तो अल्लाह ताला तक पहुंचता है और बाज़ रास्ते टेढ़े हैं, वो इस तक नहीं पहुंचते। इसी तरह सद्दा, सदीद के लफ्ज़ में भी है ये सीन दाल दाल, अल्लाह ताला ने इसका भी तस्करा किया। वल यकूलु कौलन सदीदा, सीधी बात करो अल्लाह से डरो, तो सीधे के लिए ये लफ्ज़ आया। चलिए ज़रा सा इसको जज्ब कीजिए अब इसी पे रुक कर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, छोटी सी दुआ, बिल्कुल आप कह लीजिए कि तीन लफ्ज़ों की दुआ और ज़ुबानी बच्चों को भी याद है, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुआ आपको मुझे क्या सिखाती है। अल्लाह सुबहाना तआला आपको मुझे इसमें जो बात सिखा रहे हैं वो क्या है कि तुम अल्लाह से मांगने की चीज़ों में से बेहतरीन चीज़ मांग लो, और वो बेहतरीन चीज़ हिदायत है। अब आप लिखिए चंद जुमले और चंद पैराग्राफ और चंद पेजेस बन जाएं, जो लिख सकते हैं इस पे लिख लें, नहीं लिख सकते तो दिलों पे रखिएगा कि आखिर हम ये दुआ क्यों मांगते हैं। तो एक जुमला, आम दर्जे की जन्नत मांगने की बजाय आला तरीन दर्जे की जन्नत मांगना सिखाया। अब इस पे बस रुक के तो लिखिए आप लोग, मैं अपने आप को सामने रखते हैं इस वक्त, अब सबको भूल जाइए, क्योंकि जब हिदायत और दूसरी चीज़ों की बात आती है तो हमें दूसरे अपने से ज़्यादा याद आते हैं। फलां ऐसा, फलां वैसा, फलां ने ये किया, फलां वो करता है, फलां का मामला ऐसा, तो हम साबेहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करते हैं। जब हम ये दुआ करते हैं तो आखिर हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? तो हम अपने रब से मांगते हैं कि अल्लाह हमें छोटी सी नहीं बड़ी सी जन्नत चाहिए, आम दर्जे की नहीं ख़ास दर्जे की जन्नत चाहिए। जितना ज़्यादा आप तड़प और तलब के साथ कोशिश करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके की रहनुमाई अता फरमाएगा। छोटी चीज़ मांगते हैं, अल्लाह उनको बड़ी चीज़ देना चाहता है। कुछ लोग बड़ी पे होते हैं लेकिन उनको फिर भी छोटी चीज़ चाहिए होती है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप ख़ुद से कीजिए। जब आप लफ्ज़ हिदायत जहन में लाते हैं तो आपके जहन में क्या तस्वुर आता है? हर एक सोच ले, क्योंकि इस वक्त हम पूछने के मोड में नहीं हैं, वरना मैं ज़रूर पूछूं आप लोगों से, लेकिन अपने जहन में लफ्ज़ हिदायत लाइए। जैसे मैंने और भी लोगों से सुना और पूछा तो लफ्ज़ हिदायत के साथ कुछ लोग कहते हैं रोशनी आती है। लिखिए, शाबाश। खुद से सवाल कीजिए कि जब मैं लफ्ज़ हिदायत बोलती हूँ तो मेरे जहन में क्या आता है? कोई कहता है चिराग आता है, कोई कहता है रोशनी आती है, कोई याद कहता है सीधी एक लाइन दिखती है, कोई कहता है कि मेरे जहन में बल्ब आता है 0 वाट का और उससे बड़ा। सब कुछ अपनी जगह पे रखते हुए आप इस हिदायत को सोचते जाएं। कोई कहता है मुश्किलात आती हैं, कोई कहता है कुर्बानियाँ देनी आती हैं, कोई कहता है बस मुझे तो ऐसे लगता है इसके बाद ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रह जानी, बस हर वक्त मसल्ला नमाज रोज़ा और मस्जिद टोपी। लेकिन बात यह है, अगर आज मैं आपको जो एनालॉजी देने लगी हूँ आपको मैं समझा पाई तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करूँगी, और ना भी समझा पाई तो भी शुक्र अदा करूँगी इस बात पे कि अल्लाह ने मुझे तौफीक तो दी मौके की। मैंने जितना भी कुरान को पढ़ा और समझा और सीखा, मुझे हिदायत के तसव्वुर के साथ एक सीढ़ी दिखती है। सीढ़ी का तसव्वुर जहन में लेके आते हैं ना तो मुझे ऐसे लगता है कि हिदायत क्या है। लिखिए शाबाश और महसूस कीजिए, एक के बाद एक स्टेप पर चढ़ते जाना। आपके सामने भी एक सीढ़ी है और आप अपने आप को सीढ़ी पे चढ़ने वालों में महसूस कीजिए। ये हिदायत का नुस्खा क्या है जिसके लिए हमने अपने दिलों को तैयार करना है, और इस साल जो दिलों पे काम करना है उसकी वजह ये है कि हिदायत की सीढ़ी पे चढ़ सकें। आप देखिए कि ज़िंदगी में हिदायत पाने के लिए आपको एक से एक मरहला तय करना पड़ता है। सीढ़ी पे चढ़ना, ये जो इमेज है बस इसको अपनी नज़रों में समा लीजिए। एक शख्स खड़ा है जिसका हाथ भी नहीं जा रहा तो स्टेप इतना ऊंचा है, और वो बेचारा यही कह रहा है मुझसे नहीं होता, मैं कैसे करूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे लिए नामुमकिन बात है, ये कैसे और ये मैं क्यों कर पाऊँगा। हैं, इसके बरक्स आप साइड पर जो दूसरी तरफ देख रहे हैं शख्स, वो कौन है? ये वो शख्स है कि जिसने कोशिश की। उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ी नेकी करूँगा, कोई बहुत बड़ा काम करके ही हिदायत पाऊंगा। जैसे कुछ लोग यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ते और खाना काबा में जाके नमाज पढ़ने के लिए रोते हैं, यहाँ सुन्नतों को पाँव के नीचे रोनते हैं और रोज़े की जालियों को चूमने का शौक है। आप इस इमेज को देखकर क्या समझे, कामयाब कौन है? बड़े बड़े कामों के नाम पर कुछ ना करके सिर्फ हाथ खड़े करके हैंड्स अप करने वाला, ये नीचे हैंड्स अप है? और ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा होता है। कोई बड़ी नेकी करनी है इसलिए छोटी नहीं करनी। मैं तो जी जब कोई नेकी करूंगा तो बड़ी करूंगा, और अभी मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं दूसरों को कैसे कह दूं? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस बात की तौफीक दी है कि हम अपने आप को संवारें। क्या करें? नेक्स्ट पे चलिए, एक और आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि इस्लाम में हिदायत का कॉन्सिक्वेंसेस के साथ और उसके तसलसल को अगर आप सामने रखते हुए देखें, तो जो इमेज मेरे जहन में आया उसको बनाने की एक हल्की सी कोशिश आपके सामने की गई है कि हम हिदायत कैसे मांगे, क्योंकि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है ना। अभी तो हम ज़ात पे बात करेंगे ना, और कुरान के नूर में हिदायत देखनी है। कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये नूर नहीं होता, और कल तक हमारे भी नहीं था बिलफर्ज़। मैदान में खड़े थे और ख़ुद को हिदायत याफ्ता समझते थे, चलो मैं दूसरों से तो अच्छी हूँ। है कुछ किसी लोगों का ये इमेज, क्या हुआ दूसरों से तो मैं बहुत अच्छी हूँ ना। अब वो अंधेरों में खड़े थे खड़े थे खड़े थे, खुद को बड़े हिदायत वाले समझते, इतने में किसी ने कुरान का टार्च खोल दिया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ये है वो किताब जो तुम्हें पुकारती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब कुरान का नूर जिंदगी में खुला तो पता चला कि हम तो हिदायत याफ्ता नहीं है। तब कहते तो क्या हुआ, गले में तो लेते हैं। वो क्या हुआ, बाजू तो पूरे ही थे ना, क्या हुआ, कमीज पहनी तो हुई थी। यानी जब कुरान का नूर जिंदगी में नहीं था, आपको मैं सबको दावत दूंगी, मैं अपने समेत, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वक्त, कोई लम्हा याद कीजिए जब हिदायत से दूर थे। कहीं ना कहीं पार्शल हिदायत तो हर एक की गुजरती है, और कुछ तो मुतलक हिदायत में थे। चलो तुम उधर हवा हो जिधर, जैसा देश वैसा भेस, जो हम कर सकते हैं हम तो वही करेंगे। और इसके बरक्स आप देखिए कि दूसरा एक वक्त कुछ ऐसा भी होता है कि हर दौर में एक इंसान अपने आप को हिदायत वाला ही समझ रहा होता है। वो कहता है मैं बड़ी हिदायत पे हूँ, या कोई कहता है मुझे ज़रूरत नहीं। आज यहाँ बैठकर खुद को ज़रा उधर पीछे ले जाइए कि जब हिदायत नहीं थी, अगर उसी पे मौत आ जाती, अगर उसी में दुनिया से चले जाते और कब्र में जाके 3 सवालों का जवाब भी ना आता। और याद रखिए, बड़े से बड़ा बेहिदायता खुद को हिदायत याफ्ता समझता है, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में रोशनी और सांप का फर्क नहीं मालूम होता। याद रखिएगा, अंधेरे में हिदायत और रोशनी का फर्क नहीं पता चलता। इसी तरह कुरान की रोशनी से बगैर हमारी जिंदगी में अंधेरे और रोशनी का फर्क नहीं पता होता। आप जब अंधेरों में होंगे, खतरों में होंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना पढ़ो ना सुनो ना अमल करो, बैठकर कुछ और कर लो। हर साल रमजान में 10 रातें जाग लो, एक उमरा कर लो, एक हज कर लो, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुतलकन इस पे जमना ये दुरुस्त नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आप सवाल लिखिए, मैं हिदायत पे आना चाहती हूँ, और मैं इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी सिस्टर अपने तसव्वुर में जिसके स्लीवलेस पहने हुए, टखने भी खुले और बिल्कुल कांप रही है। क्योंकि मसला पता क्या है कि जब लोग दीन से और हिदायत से भी ज़रा सा दूर होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि ये तो पता नहीं कौन है। नहीं, प्यार कीजिए, मेरी ये बात सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, आप फिल्में देखती हैं तो क्या हुआ, आप गाने सुनती हैं तो क्या हुआ, आप मॉडलिंग करती हैं तो क्या हुआ, आप तो इससे भी बड़ी हुई हैं तो क्या हुआ, आपसे कुछ कबायर सरजद हो गए फिर क्या हुआ, आपने अल्लाह की हदें कई दफ़ा तोड़ी फिर क्या हुआ, इसलिए क्या अंधेरे में रोशनी है कोई नहीं, पता कोई भी नहीं है। आप कहते हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो उसका जवाब है सबसे पहले फ़राइज। हिदायत का पहला स्टेप, उस सीढ़ी के पहले फेज पे अगर आप आते हैं तो आपको उसके लिए आपको फ़राइज़ पूरे करने होंगे। सिर्फ फ़र्ज तो पढ़िए, चलिए, आपको ईशा की नमाज बड़ी लंबी लगती है, फर्ज तो पढ़िए। फजर में उठना मुश्किल लग रहा है ना, चले फर्ज तो पढ़िए। आपको जोहर में बड़े काम हैं, आप तो जॉब पे हैं, इधर उधर हैं, बिजनेस में हैं, फलां, फर्ज तो पढ़िए। आप स्कूल कॉलेजेस में हैं, फर्ज तो पढ़िए। 10 चीज़ों को जहन में लाकर रखिए, एक एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। और वो क्या है कि फ़राइज़। आपने जिसको भी हिदायत का रास्ता दिखाना है अपने घरों में, अपनी फैमिली में, उसको पहले फ़राइज़ की आदत तो डालिए। और इसमें आपको मैं हिकमत भी देना चाहती हूँ तबलीग की। बच्चे वो कहते हैं हम नहीं पढ़ते नमाज, बड़ी मुश्किल है, बड़ी लंबी नमाज है। चलो बेटा फ़र्ज़ तो पढ़ो। आपके शौहर नमाज नहीं पढ़ते और 10 चीज़ें और भी हैं। सिगरेट पीने के ऊपर मत जाइए खुदा के लिए, हम लोगों के सिगरेट छुड़ाने लग जाते हैं, वो भी नमाज भी नहीं पढ़ते। इसके अंदर ज़िंदगी में एक असूल बना लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट, द लीस्ट मिनिमम, द बेयर मिनिमम। हिदायत जो हर एक इंसान का हक है, वो क्या है कि फ़र्ज़ तो पूरे करें। आप रोज़ा तो रखिए, आप ज़कात तो दीजिए, आपको जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं आप उन जिम्मेदारियों से फ़ायदा तो उठाइए। और इसके साथ साथ आप अपने उस एक एक मामले को बेहतर से बेहतर करते जाएं। फ़राइज़ में आपकी नमाजें हैं, आपके रोज़े हैं, हज नहीं किया, हज है, ज़कात है, ये तो आपके पर्सनल फ़राइज़ है ना। फिर मामलात हैं, माँ बाप का ख्याल कीजिए, वो आपका रास्ता देख रहे हैं, उनका दिल तोड़ा हुआ है, उनके आंसू पोछिए। आपकी वजह से अगर उनकी आंखों में आंसू है तो जब तक आंसू पोंछ नहीं लेंगे आपको चैन नहीं आएगा। आप शौहर हैं, बीवी के साथ मुखलिस नहीं थे, पहले अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए एक शौहर होने के नाते। और आप एक बीवी हैं, बीवी होने के नाते आप अपने शौहर के हकूक अदा कीजिए, माफ़ी मांगिए। आपने उनका ख़ास हक नहीं दिया, वो हक दीजिए। हर वो चीज़ जो अल्लाह और बंदों के मामलात में अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, आप पहले उसको पूरा कीजिए, फ़राइज़। दैट इज़ द लीस्ट मिनिमम। और फ़राइज़ जब अदा करता है ना इंसान, तो पीछे वो जो अकीदे की बातें हैं ना, जो सबसे पहली चीज़ें हैं, आपके दिल में ये जो हिदायत का जाग गया है ना बीज, एक जोश आ गया ना, आपके अंदर एक तड़प आ गई है कि मैंने अपने आप को बदलना है, तो लिखिए एक जुमला। हिदायत का सफ़र, सीढ़ी का सफ़र इस तरह बनता है कि कुछ छोड़िए, कुछ अपनाइए। आप एक स्टेप पे पांव रखते हैं, फिर आप दूसरे पे आ जाते हैं, फिर दूसरा छोड़ेंगे तो तीसरे पे आएंगे ना। तो आपका जहन इस वक्त हिदायत की तलब कर रहा है, यही बात समझ आती है कि आप अल्लाह को मान गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपका पक्का होगा तभी हिदायत आएगी। और जब आपके जहन में हिदायत का तसव्वुर आए तो चिराग नहीं, रोशनी नहीं, एक सीढ़ी को रख लीजिए, फ़राइस पे आइए। अच्छा, बंदा फिर फ़राइस पे आ जाता है, उसके बाद दूसरा स्टेप फिर सुन्नत है। फिर सुन्नतों में नमाजों और इबादात की सुन्नतें भी हैं और मामलात की सुन्नतें भी हैं, और इसी तरह से वो दूसरी चीज़ें भी सारी आपको सुन्नत की इसमें आएंगी, जिसको हम लेवल 2 पे रखते हैं। फिर नवाफिल, फिर इसके बाद आपकी एक एक चीज़ खूबसूरत होती जाएगी, और आप एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते आखिर में मेहनत करते जाइए, चढ़ते जाइए। हदीस में आता है ना कि साहिबे कुरान से कहा जाएगा कि इकरा वरका, पढ़ता जा तो चढ़ता जा, और फिर एक दिन आएगा कि आपके फ़राइज़ भी पक्के, सुन्नतें भी पक्की, नवाफिल भी पक्के, अखलाकियात भी अच्छे, मामलात भी अच्छे, और आप फिर अपने मुआशरे के असाबिकूनल अव्वलून में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह वो वक्त जल्द लेकर आए। एक ही दम में ये रास्ता नहीं तय होता, जिस्त लगाकर आप पूरी हिदायत एकदम स्वालो नहीं कर सकते। ये हमारी तबलीग का भी नक्स होगा अगर हम रातों रात लोगों की दाढ़ी निकलवाने की कोशिशें करें, और पहाड़ों की तरह गड़ी हुई आदत को एक दिन या एक दो दिन की नमाजों से दुरुस्त कराना चाहिए, ये नहीं होता। इवन लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर जो कमी पेशियाँ होती हैं, जो खराबियाँ होती हैं, वो उसको दूर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, मैंने एक किसी के बारे में पढ़ा था या सुना था कि रिवर्ट हुए, जियो से मुस्लिम हुए थे, मोहम्मद असद, तो वो कहते हैं कि मैंने जितनी मुश्किल से अपने आप को फजर का आदी किया उतना कुछ और मुश्किल नहीं लगा। मैं एक अलार्म अपने बिस्तर के पास लगाता, फिर 15 मिनट बाद का अलार्म अपने बिस्तर से ज़रा थोड़े से फासले पे रखता, फिर तीसरा अलार्म मैं बाथरूम के पास रखता। पहले से कुछ आंख खुलती बंद करके सो जाता, दूसरे से आंख खुलती तो फिर मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत करता, और जब तीसरा अलार्म आता तो मैं बाथरूम तक पहुंच चुका होता। फिर मैं अपने मन नफ्स को समझाता कि देखो तुम ना नमाज पढ़ी लौट तो गए हो, चलो मैं वॉशरूम तो यूज़ करूं। कदम कदम डोलते लोगों को थामिए, खुद को भी थामिए, और इस तरीके से फिर आप देखेंगे कि जब आप अपनी हिदायत में आगे बढ़ने लगते हैं, आप जब इस चीज़ के अंदर अपने आप को ले जाते हैं ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल का ज़रिया बन जाती है, और आप इस चीज़ के साथ अपने आप को फिर पीछे करने की बजाय आगे कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को लेकर आएंगे कि मैंने हिदायत के इस सफ़र को छोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना, जाने नहीं देना, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इस हिदायत के सफ़र पर इतना आगे चले जाएंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप कहाँ पड़े हैं। लोगों के साथ सहूलत का मामला कीजिए, आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप और मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आसानियों के मामले बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए एक और चीज़ जो आप इसमें थोड़ी सी अपने लिए समझेंगे, और वो क्या है, सबसे पहले जो चीज़ हिदायत के क्या है, ज़हनी हिदायत। सबसे पहले लोगों के ज़हन तैयार होते हैं हिदायत कबूल करने के लिए। आप फ्लायर देने गए, आप तो अगले के सर पे सवार ही हो गए, अगला आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है और आप उसके सर पे मंड रहे, तो हिदायत मंडी नहीं जाती। कुरान की आयत है अनुलजिमुकुमूहा, गालिबन सूरत हूद होगी या यूनस, उसी के दोनों में से कोई एक सूरत है, करीब की सूरतों में है, कि क्या मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे गले मान दूँ। हज़रत नूह कहते हैं अपनी कौम को कि जब तुम्हें हिदायत चाहिए कोई नहीं तो मैं तुम्हें हिदायत ज़बरदस्ती क्यों दूँ, कैसे दूँ? ना माँ अपने बच्चे को हिदायत दे सकती है, लिखिए, ना माँ अपने बच्चे को हिदायत दे सकती है, ना शोहर अपनी बीवी को हिदायत दे सकता है, जब तक के अल्लाह ना चाहे, जब तक बंदा ना चाहे। और जितना ज़्यादा आप बंदे अल्लाह सुभान ताला के ऊपर नज़रें लगाते हुए हिदायत के लिए अपने आप को लेते जाएंगे आसानी होगी। तो सबसे पहली बात जज्बाती हिदायत, उसके बाद आप देखिए पहले लोगों के जज्बात ऐसे बनाइए कि वो हिदायत लेना चाहें, अपने ऊपर है इमोशनली आपको हिदायत की ज़रूरत महसूस हो। जब आप जज्बाती हिदायत किसी को देते लेते, ज़हनी हिदायत मिलती, फिर कहीं जाके अमली हिदायत मिल जाती है। और बात सच ये है, हिदायत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, उसके दर्जे होते हैं। मंजिल का रास्ता दिखाना, रास्ता आसान करना, मंजिल तक पहुंचा देना, इन सारे रस्तों में एक वक्त वो आ जाता है फिर कि जब फिर जज्बात अल्लाह और उसके रसूल के साथ नथी हो जाते हैं, फिर मकसद अल्लाह ताला की रज़ा बन जाता है, और फिर एक के बाद आप एक कदम आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। आप कभी किसी सीढ़ी पे चढ़े हुए शख्स को जहन में लाइए, आप खुद भी तो चढ़ते हैं ना, एक दर्जे पे खड़े हैं और अगले स्टेप को देख रहे होते हैं। सीढ़ी के पास खड़ा शख्स कभी मुतमईन नहीं होता, कब तक? जब तक के वो अगले स्टेप पे ना आ जाए। फिर जब आप अगले स्टेप पर आ जाते हैं तो उससे ऊपर तीसरे को देखते रहते हैं, फिर आप तीसरे पे आते हैं तो चौथे पे। आप में से वो स्टूडेंट्स जो पहले ज़िंदगी में कुछ वक्त अंधेरों में गुजार चुके, वो ज़रा सा इसको जहन में लाइए। एक वक्त था कि ज़रूरत ही महसूस ना हुई, फिर सामने दौरे कुरान आ गया, फिर सबीलुल जन्ना 2020 ऑफ़र हुआ, आपको बहुत ही शौक लगा कि मैंने तो ये काम करना है, और आप क्या सोचते हैं कि बस ये होगा नहीं, करते रहे कोशिश करते रहे, आप 10 पारों के करीब पहुंच गए। हम सोचते हैं कोई काम शुरू करते हुए कि जिस दिन ये बस मैंने काम करना है उसी दिन मुझे पूरी हिदायत मिल जाएगी। अब 10 पारे पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तो हिदायत पूरी नहीं है, अधूरी है, और तकमील के वक्त पता चलता है कि ओहो अभी तो कमियां ही बहुत सारी हैं। अब क्या करें, आप एस बिलुल जन्ना 19, वो तो पूरा भी हो गया, 18 पूरा हो गया, 17 पूरा हो गया। वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात की गवाही दें
क्या आज भी आपको लगता नहीं है कि आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगने की ज़रूरत है? चलते जाएंगे, काम चलता जाएगा, ये ऐसा रुकने वाला सफ़र ही नहीं है। तबी तो अम्बिया कराम भी कहते थे और नबी सल्लम भी तभी तो कहते थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपके पास सब था लेकिन वो इस्तकामत मांगते थे, तो हिदायत का सफ़र आपके कद के साथ बड़ा होगा। जितना बड़ा हदफ बनाएंगे उतना बड़ा दर्जा मिलेगा। अल्लाह सुबहान तआला आपको, मुझे कहता है सारी ज़िंदगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं मांगते जाओ, करते जाओ, कोशिश करोगे, अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। और अल्लाह सुबहान तआला के हाथ में ये सब कुछ है, तुमने इसके साथ अपने आप को रखना है। फिर आप देखिए कि जब आप इसी तरह से शुरू में गए, मसलन हिदायत की तरफ अभी शुरू शुरू का कदम है, यानी महीने में एक दफ़ा दर्स सुनने की आदत हो गई, कुछ को साल में एक दफ़ा सुनने की आदत है, कोई बात नहीं, अदना सी हिदायत मिल गई। एक जुमला आज लिख कर जाइएगा, अदना हिदायत मिल गई है ना तो जन्नत ज़रूर मिलेगी, लेकिन अदना जन्नत मिलेगी। आला हिदायत के साथ आला जन्नत, आला तर हिदायत के साथ आला तर जन्नत, और आला तरीन हिदायत के साथ आला तरीन जन्नत मिलेगी। हिदायत वाला दर्जे तय करता जाता है हिकमतों के साथ और जन्नत के दर्जों पे पहुंचता जाएगा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे वक़ालहमदुल्लाजी हदान अली हाजा वमा कुन्ना लिनहतदीलान हदान अल्लाह। सारी तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने हमें हिदायत दी इसकी, यानी जन्नत में पहुंचने की हिदायत दी। हम तो वहाँ नहीं पहुंच सकते थे अगर हमारा रब हमें हिदायत ना देता। तो क्या पता चला, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता ही जाएगा। जिस दर्जे की हिदायत होगी उसी दर्जे की जन्नत मिलेगी। हिदायत का अदना दर्जा अदना जन्नत तक ले जाएगा, और जन्नत के 100 दर्जे हैं तो हिदायत के भी 100 ही दर्जे हैं। आप में से किसी को कहा जाए कि 100 गज़ के फ्लैट में रहना है या 1,000 गज़ के बंगले में, किस में जाएंगे? 5 मरले के घर में या 5 कनाल की कोठी में? तो सबको पता है हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम कैसे एक एक चीज़ के लिए दुनिया में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या मैं और आप उस जन्नत को पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? असल में ये दौरे कुरान आपको मुझे यही सबक देगा। अभी तो शुरू हो रहा है ना, तो आपके दिल कांप रहे हैं, इंशाल्लाह चलते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हर काम करते जाएंगे। आपको कुछ छोटी छोटी आदतें छोड़नी पड़ेंगी तो छोड़ देंगे। जब रब प्यारा हो गया, वो 3 लफ्ज़ अपने दिल से बांध लीजिए, जज्बाती हिदायत पहले दीजिए लोगों को, और वो कहे कि अपनी और लोगों की ज़ाती मोहब्बत, फीलिंग, इमोशंस अल्लाह और उसके रसूल के साथ आ जाएं। जब अल्लाह से प्यार हो गया, वल्लज़ी नामन अशद्दु हुब्बल लिल्लाह हो गया, जब रसूल से प्यार हो गया तो कैसे ना नमाज कोई पढ़े, तो कैसे नबी के तरीके सुन्नत मुताबिक से शादियां ना हो और ब्याह ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान हिदायत का फार्मूला अपनाता है, फिर ऐसे ऐसे नवाफिल अच्छे होते जाते हैं, पहले बंदा मुसलमान बनता है, फिर मोमिन बनता है, फिर मोहसिन बनता है, फिर शक वाले काम भी छोड़ देता है। एक दफ़ा हिदायत बस मिल जाए ये दुआ करें, इसको छोड़ना नहीं। आगे जाके बताती हूँ कि जब मिलती है तो उसके बाद क्या होता है। हिम्मत वाला दर्जे चढ़ता जाएगा, जन्नत के आला दर्जात तक वो पहुँचेगा जिसमें हिदायत के एतबार से बड़ी हिम्मत है, और वो फिर असहाबुल यमीन से ऊपर होते होते असाबिकूनल अव्वलून में शामिल हो जाएगा। आपको लगता है आप में इतनी हिम्मत नहीं है, तो कोई बात नहीं, खड़ी हो जाइए, वापस कभी ना पलटिए। जब आप हिदायत के सफर से वापसी का यू टर्न लेते हैं, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वहीं खड़े रहे। देखिए, आप पहाड़ी मुकाम पे गए, वॉक करते हैं, ऊंची सी पहाड़ी है, आधी तय कर ली, सांस फूल गया, हिम्मत जवाब दे रही क्या करूं, नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं वापस जा रही हूं। तो वापस जाने में भी तो वक्त लगेगा, मेहनत तो होगी, क्या करें? टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, रुक जाइए, सांस दुरुस्त कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और फिर थोड़ा चलिए। पीछे जाने में भी तो 1 मील जाना था, अगर आगे जाकर 1 मील पे जाएंगे तो मंजिल आ चुकी होगी, और मंजिल को देखते सारी थकन दूर हो जाती है। آپ کو مجھے جنت میں جا کر چین پڑے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ جب اپنی جنت کو دیکھیں گے آپ کو دنیا کی ساری چیزیں بھول جائیں گی۔ آپ نے میں نے صرف اصحاب الیمین تک بنانے کی ان کو کوشش کرنی ہے جن کے منہ مڑے ہوئے ہیں ابھی۔ ماں جنت کے قریب چلتی جائے، بچے بھی اس کے قریب آئیں گے۔ پچھلے سال آپ کو ایک بڑا پیارا فلو چارٹ دیا تھا، اس سال بھی ڈال دیں گے وہ اس کو کسی نہ کسی پارے کے اندر دورے قرآن میں، کہ آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر والے جنت کے قریب آئیں تو آپ اور قریب آئیے۔ ہم ان کی وجہ سے اگر اور پیچھے ہوتے ہیں تو وہ کیوں آئیں آگے؟ یہ پیئر پریشر نہ برداشت کرنے کی وجہ سے کئی لوگ اپنے خاندان کے اپنے گھر والوں تک کو جنت سے پیچھے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ٹوٹی پھوٹی جنت نہیں مانگنی، ہم تو دنیا میں عادی نہیں ہیں ٹوٹی پھوٹی چیزوں کے، سب سٹینڈرڈ چیزیں تو ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی، موٹی جھوٹی تو چیز پہنتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں۔ جب دنیا میں اعلیٰ ہے تو وہاں اعلیٰ ترین کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی کے نور کی روشنی میں یہ ہدایت دیکھتے جائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، ہمت پیدا کریں گے، اور ایک دفعہ جب ایک درجہ طے ہو جاتا ہے نا تو قدرتی طور پہ ہمت آنے لگتی ہے، پھر دوسرے پہ آ جائیں گے، پھر تیسرے، کوئی 6 مہینے میں جمپ کر کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، کہاں پیچھے سے چلتا ہے اور وہ سب سے آگے آ جاتا ہے، ہدایت میں، عمل میں، ہر چیز میں۔ اور کوئی ایسے ہیں جو 6 سال میں آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آتے رہیے، لیکن رکنا نہیں۔ وہ نہ بنیے جو آ کے پلٹ جائیں۔ رب بنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والے جنتیوں کو نیچے والے ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ کو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے امید ہے، آئی ہوپ، کہ آپ اور میں آج کے بعد اپنے اور دوسروں کے معاملے میں بہت زیادہ فطری طریقے سے ہدایت کے خواہاں ہوں گے۔ قرآن سے جڑے رہیے، اللہ کی کتاب میں ایک بہت بڑی تاثیر ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ اس طریقے سے آگے لے کر جائے گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پھر جگہ دیتے جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی، یہ ہوگا کیسے، اس کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے گا، علم بہت ضروری ہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اگر ان ساری چیزوں کو لے کر آنے کے لیے اپنا درجہ علم کے ساتھ رکھیں، تو آپ کے سامنے ایک اور امیج ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اب اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ سورج یوسف کی آیت 76 ہے یہ، جب کبھی اس کے اوپر بات ہوئی گی قرآن پاک کے سفر میں تو آپ دیکھ لیں گے۔ ایک تو اسے مراد ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیے تو آپ کے میرے لیے اللہ نے ہر وقت اپنے علم کو بڑھانے کے درجے رکھے ہیں، صبر کے ساتھ علم حاصل کرتے جائیں، ایک دن آپ کی ہدایت ضرور بڑھے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو دوسروں کو کیا بتائیں، خود تو آتا کچھ نہیں، عمل تو ہے نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے ان کے گھر میں درس ہوتا ہے، لے جی یہ وہ ہیں جو بہت قرآن کی خدمت کرتی ہیں سارا دن۔ ہاں بھائی کرتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ابھی مرحلوں میں ہے، نہاری ابھی پک رہی ہے، تو ابھی کیا ہو گیا، کچی ہے تو کیا ہوا، ابھی کس نے کہا پکی؟ زندگی کے آخری سانس تک ہدایت کی بات چلتی ہی رہے گی، اور ایک چیز کو بہترین طریقے سے لینے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اپنا دامن علم سے نہ کاٹیے، جو علم سے کٹا اس کی ہدایت کی ڈوریاں کٹتی جائیں گی، اور آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم بہت ہی پیارا ہے، جس سے آپ قرآن کی ضرورت اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، کہ اللہ کا کلام، اللہ کی یہ کتاب آپ کو کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ صاف کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپا ہے، یہ قرآن کوئی کتاب نہیں، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ جب یہ روح میں سما جاتا ہے تو جان کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اور جب جان کچھ اور ہو جاتی ہے تو جہان بھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ فاش گوئم آنچے درے دل مزمر است، چوں بجان درفت جان دیگر شوت، ای نہ کتابی نیست چیزی و دیگر است، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شد۔ دعا کیجئے کہ اس کتاب کے ساتھ ہماری صبح شام رات دن گزر جائیں، پھر بات بنے گی، پھر ہم سمجھیں گے ساری چیز کو۔ तो इस सारी एनालिटी को समझने के बाद अब चंद बातें और एंड पे, जिसको समझकर हम इंशाल्लाह अपने ऊपर मजीद मेहनत करेंगे। और वो क्या है कि सूरत अल फातिहा को जब आप खोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इन तीन आयतों से तो ये पता चलता है, सवाल लिखिएगा, बड़ा अहम सवाल करने वाली हूँ। इन तीन आयतों से ये पता चलता है कि जो बंदा भी सूरत अल फातिहा पढ़ रहा है उसको अल्लाह का पता लग गया, ठीक है, सारी तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, उसको ये भी मालूम पड़ गया, रहमान और रहीम भी उसको मान गया। हाँ, फिर उसके बाद आप देखिए कि उसको ये भी पता है कि मालिक यौमिद्दीन है, यानी अकीदा आखरत भी ठीक है, ईमान भी है उसका इस सारी चीज़ों पे। अब सवाल लिखिए अपने लिए, पहले से शऊर से समझिए कि जब आप कुरान पाक में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगते हैं तो सवाल उठता है कि अल्लाह को जान गए, आखरत को मान गए, फिर या का नाबुदू व या का नस्तईन के साथ अपने मुकाम को भी पहचान गए, तो फिर सवाल लिखिए, फिर अब किस हिदायत की ज़रूरत है? सवाल बड़ा ट्रिकी है, ये तो मैं भी मानूंगी। तो सवाल क्या है कि रब को मानने के बाद अब और किस हिदायत की ज़रूरत है जो एक इंसान नमाज़ों में मांगता है? तो उसका जवाब लिखिए। हम जब अल्लाह से कहते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हम उसमें अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह मुझे हर हर कदम पे हिदायत चाहिए, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे दिल की हिदायत भी चाहिए। सवाल लिखिए, हमें हिदायत किस किस मैदान में चाहिए? ए अल्लाह, मुझे ज़ुबान की हिदायत चाहिए, मेरी ज़ुबान सीधी हो जाए, वसद्दित लिसानी और कूलु कौलन सदीदा, मेरी ज़ुबान से कभी गीबत ना निकले, गीबत ना हो, बोहतान ना लगे, मैं किसी के मामले में कुछ भी ना कहूँ, मुझे कानों की हिदायत चाहिए, मेरे कान तेरी नाफरमानी की कोई आवाज़ ना सुने, गीबत से मुझे नफरत हो जाए, मुझे अपनी आंखों की हिदायत चाहिए, मेरी आंखें वो गलत ना देखें जो कि मैं अपने आप को गुनाहगार कर दूं, और इसी तरह से मेरे माली मामलात दुरुस्त हो जाएं, मुझे तेरे सामने अपने आप को पेश करने के काबिल करना है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इसमें एक इंसान कहता है इहदीना, लिखिए, बड़ा गौर तलब नुक्ता है, आज की अगली नमाज में ज़रूर गौर कीजिएगा इसके बारे में, इहदीनी की बजाय इहदीना क्यों आया है। हम सब जानते हैं कि इहदीना जमा का सीगा है और इहदीनी वाहिद है, यानी वो वाहिद मुतकल्लिम है, वो जमा मुतकल्लिम है। तो क्या पता चला कि जब आप कहते हैं ना इहदीना, इसमें है असल में आज के सबक का सबसे बुनियादी नुक्ता। जब आप अल्लाह सुबहान तआला से कहते हैं इहदीना, तो यहाँ आप लिखते हैं इज्तमाई हिदायत, यानी असल हिदायत निज़ाम हिदायत है, इज्तमाई इज्तमाई। आज इनफरादी तौर पे आप लोगों को देखिए तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन आज के दौर में पूरी दुनिया को अगर आप सामने रखें तो हमें तीन निज़ामों की हिदायत की दुआ की ज़रूरत है। नंबर एक, माशरती निज़ाम की हिदायत मांगी है। क्यों? आज इस माशरती निज़ाम के बिगाड़ ने तल्लाकों को आम कर दिया, सोशल लाइफ, घरेलू ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मर्द मर्द से ताल्लुक़ पैदा करने लगे जी। आज होमोसेक्सुअलिटी क्या है? माशरती निज़ाम बिगड़ा, अल्लाह ने औरत मर्द का जो ताल्लुक़ हलाल और निकाह के ज़रिए में रखा था वो गंदगी की तरफ चला गया, और लोग आज कहने लगे कि जब, यानी अगर आप दिल आज़ारी ना हो तो कुछ नाम है और उनके कोटेशंस मौजूद है मेरे पास कि जिन्होंने ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलकर कह दिया कि क्या ज़रूरत है। जब बाहर मुझे फ्रेश दूध मिलता है, जहाँ से चाहूँ जो मर्ज़ी ले आऊँ, तो मुझे फिर गाय अपने घर में बांधने की क्या ज़रूरत है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यानी शादी करके एक बीवी का खर्चा क्यों पालूँ जब मुझे हर चीज़ बाहर से रेडीमेड मिल सकती है, और ये दीन तो बोझ है। और आज ऐसी सोच देने वाले जिनको लोग बड़े पैसे दे दे कर पढ़ने और पढ़वाने जाते हैं, उनको समझ आ गया कि ये क्या हो गया, इस्लाम तो बड़ी पाबंद ज़िंदगी सिखाता है। اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج آپ کی میری نسلیں جس معاشرے میں, جس دنیا میں, جس ماحول میں پل رہی ہیں, یہاں کہیے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ فیملی لائف کو ٹھیک کرا دے, ورنہ تو پھر کل دو لڑکے شادیاں کریں گے, دو لڑکیاں کریں گے اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اور کسی کا کال میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ جب کتے کو بہن اور بیوی اور ماں کا فرق نہیں پتا تو انسان کو کیا, جہاں پیاس لگی پیاس بجھا لی. یہ جملے ہیں. آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ آنکھیں بند کر کے گزرنے کا دور نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, قرآن سب سے بڑا آبسٹیکل ہے لوگوں کے رستے میں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو نکالو ہماری زندگی سے, ہم اس کے ساتھ نہیں جینا چاہتے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, فرق صرف یہ پڑا کہ آج معاشی نظام کو بھی دیکھ لیجئے, چلے سود کا دور دار ہے ہر طرف. آپ جائیں تو کدھر جائیں, آپ گھر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے دعائیں کرتی ہیں, اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا. آپ کے بچے جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں کیا ہے؟ وہاں معاشیات میں سارا سود ہے اور خرابی ہے. اور تیسری چیز دیکھیے, سیاست, ڈیموکریسی دیکھ لیجئے, ڈیموکریٹیکلی کیا کچھ ہے. آج جب تک یہ تین نظام ہوئے ہیں, ہدایت نہیں, ہماری اولادیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس معاشرے سے مراد یہ کوئی خاص ملک نہیں ہے, آپ سب پوری دنیا سے سن رہے ہیں. آپ ہر ایک پوری دنیا کو دیکھیے, اس گلوب پر آپ کی میری نسلیں پل رہی ہیں. جب تک یہ تین بنیادی چیزیں درست نہیں ہوں گی دنیا میں, خاندانی زندگی, معاشی زندگی اور سیاسی زندگی, تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. معاشرتی زندگی کے تحفے تو آپ کو بتا دیے نا, فیملی لائف کا ٹوٹنا, اولڈ ہومس, وہ کیا کہتے ہیں, ڈے کیئرس, اور جانوروں کو پالا اور اپنے بچوں کو نکال دیا. یہ معاشرتی نظام کے بگاڑ کے تحفے ہیں. معاشیات کو دیکھیے تو کہیں کمیونزم اور کہیں سوشلزم آیا اور سود نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا. آج بچے کے سکول جانے سے لے کر اس کے پڑھ کر جاب کرنے یا کاروبار کرنے تک کی ہدایت کی دعا کیجیے یہاں بیٹھ کر, کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو انہی معاشروں کے حوالے کیا اور اپنے بچوں سے ہاتھ دھو لیے. وہ کتنے سال پہلے اقبال کہہ گئے کہ گلا تو گھونٹ دیا مدرسے نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. اور ماں باپ کہتے ہیں کہاں لے جائیں ان بچوں کو, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن, اپنے بچوں سے ہاتھ دھو لیجئے. کسی تہہ خانے میں آپ ان کو چھپا نہیں سکتے. آپ اپنے گھر میں کسی چیز پہ پابندی لگائیے, باہر آپ سے بہت زیادہ ہیں ان کے بہی خواہ جو ان کو سب دینے کے لیے تیار ہیں. کہاں لے جائیں اپنے بچوں کو, یہ دعا کیجیے اہدنا الصراط المستقیم. جب تک نظام کی ہدایت نہیں بدلے گی, ہدایت نہیں بدلیں گے. آپ دیکھیے بیسک ایتھکس ہوتے ہیں, بنیادی اخلاقیات, بیسک ہیومن موریلٹی, سب کو پتہ ہے, ہندو کو بھی پتہ ہے, یہودی کو پتہ ہے, مسلمان کو پتہ ہے, عیسائی کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال کے بھیجی ہیں. اسلام جس چیز کی بات کرتا ہے وہ ہدایت کا نظام ہے. اور یاد رکھیے 300 سال سے زائد عرصہ گزر گئے انسانیت کو, یہ پچھلے 300 سال انسانیت تڑپ رہی ہے, اجتماعی عدل کے لیے ٹھوکریں کھا رہی ہے, اور ہر کچھ سالوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے آوازیں اٹھی. یہ پیچھے تقریباً 225 سال پیچھے چلے جائیے, فرانس میں ایک انقلاب اٹھا تھا, خونی انقلاب تھا, لوگوں نے جانیں دیں, تھک چکے تھے لوگ اس سارے نظام کے ہاتھوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اور آخر کیا ہوا؟ ناکامی. سود اپنی جگہ پہ, باقی اپنی جگہ پہ, کیونکہ وہ یک طرفہ تھا, وہ مین میڈ لا تھا. سیاسی تبدیلی آئی لیکن باقی کچھ نہ رہا. آج کی ڈیموکریسی کو دیکھیے, کیپٹلزم کی ڈکٹیٹرشپ ہے یہ. کمیونزم رشیا کو ڈبو کے چلا گیا, انفرادی آزادی ختم ہو گئی, سارا کما کر حکومت کے ہاتھ میں دینا ہے تو پھر بستر پہ لیٹ کے کھاتے ہیں, پھر کیوں کمائیں اور سارا رات کو ان کو دیں, یہ بھی اپنی موت مر گیا. آج بھی اسلام سے ہی دنیا کو اندیشہ ہے جی. اور میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی تو میں واقعی اندر میرے آنسو گر رہے تھے کہ علامہ اقبال جیسی ہستی اگر آج بھی کوئی دنیا میں ہو اور وہ اس کو محسوس کرے, میں آپ کو اشعار پڑھ کے سناتی ہوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ابلیس کی زبان سے انہوں نے کہلایا تھا آج سے دیکھ لیجئے کتنے سال پہلے. کہتے ہیں کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. شیطان کہتا ہے مجھے اگر خطرہ ہے نا تو امت مسلمہ سے ہے, جس کی حاک تصر میں ہے اب تک شرارے آرزو. خال خال اس قوم میں نظر آتے اب بھی وہ ہیں، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. بات تو نہیں سمجھ آئی ہوگی. کہتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آج بھی دنیا میں اگر خطرہ ہے نا تو اسلام سے، کیونکہ آج بھی اس کے اندر کچھ، چلے تھوڑے ہی صحیح، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سحر کے وقت اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں. بس ان کو، ان سے مجھے بچا لو، کیونکہ دنیا میں جب بھی میرا ایجنڈا نہیں چلے گا تو ان کی وجہ سے نہیں چلے گا. اور بات سچ ہے، بڑے بڑے نیک لوگ آج بھی امت مسلمہ میں موجود ہیں، لیکن بحیثیت امت آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس کو بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ آج اس امت کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، اور آج بھی بندہ مومن کا دین صرف مال اور پیسہ ہی بنا ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مشرق میں اندھیری رات ہے، یعنی آج مشرق تو سو گیا نا. ہاں، جو دین کے نام پہ چند پیر اور چند بزرگ ہیں جنہوں نے آج دین کے نام پر اپنی منوپلی رکھی ہے، ان کے پاس حضرت موسیٰ والا ید بیضا نہیں ہے، یعنی آج ہمارا دین درباری دین ہو چکا. تو لہٰذا آپ کو مجھے آج کے دور میں ان دعاؤں کو اہدنا الصراط المستقیم کے طور پہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور جتنا اس کی ضرورت آج ہے شاید ہی کبھی ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کلیشز آف سولائزیشن ہے. دعا مانگیے، اے اللہ اتنی مختلف قسم کی تہذیبوں اور اتنے کلچرز میں ہماری اولادوں کو ہدایت پہ رکھنا، اور جتنا زیادہ آپ ہدایت کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے جاتے ہیں اتنی بات ملتی ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں ہدایت کس میدان میں چاہیے؟ ہمیں بصیرت چاہیے. آپ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت. بصیرت کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی کا ایک گول ہو، بڑا گول ہو. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ جو نارمل ہے نا، جو اچھی آنکھ ہوتی ہے، یہ 60 کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے. آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو نا، تو آپ بس 60 میل تک دیکھ سکتے ہیں یا کلومیٹر. اس کے بعد آپ کی بصارت ختم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بصیرت، لکھیے آج اہدنا الصراط المستقیم میں آپ نے بصیرت کی دعا کرنی ہے. اور بصیرت کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی کا کوئی بڑا گول ہو، آپ کے ویژن تک پہنچنے کے رستے، بڑے بڑے کام کرنے کی ہدایت مانگیے. کیونکہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور ہدایت کو آپ پروگرس بھی کہہ سکتے ہیں. اے اللہ ترقی کرنی ہے، ٹو گرو، میں نے گرو کرنا ہے. اللہ میں یہاں نہیں رہوں گی جہاں میں ہوں. اور آپ نوٹ کریں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، جس میں ایک نیپولین ہل کا نام آپ نے شاید پڑھا، اس کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے تھنک اینڈ گرو. کہتا ہے کہ سینکڑوں کامیاب لوگوں کے انٹرویوز کے بعد جس بات پر میں پہنچا ہوں کہ ان میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان میں امیجینیشن کی بہت صلاحیت ہوتی ہے. وہ پہلے سے امیجن کر لیتے ہیں مجھے وہاں پہنچنا ہے. وہ تصور کی آنکھ میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھتے ہیں. دینا صراط المستقیم، اور قرآن تو کھولتے ہی قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو اپنا گول بڑا رکھنا. اور امیجینیشن کیا ہے؟ کھلی اور بند دونوں آنکھوں سے خواب دیکھنا. اور یاد رکھیے، خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. اصل خواب وہ ہے جو آپ بستر سے اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں. تو آپ کا موٹیویشن آپ کا خواب ہے. آپ اہدنا الصراط المستقیم کریں. آپ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس سے اچھا اور کیا کوالیفیکیشن ہوگی کسی کی؟ آج سے اپنے لیے یہ خواب دیکھیے کہ اللہ مجھے زندگی میں امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کی توفیق دے. ایڈیسن کچھ کر گئے، نیوٹن کچھ کر گئے، علامہ اقبال اپنے حصے کا کام کر گئے، مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے. بڑا خواب دیکھیے. یہ آپ کی دعاؤں میں شامل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے. اور ایک چھوٹا سا گول، ایک جیم لکھ لیجئے، شاید آپ کو فائدہ ہو، کہ ٹو رن 1 مائل مور، بس 1 میل اور چلوں گی. بس روز یہ تسلی دیتے جائیے، آپ دیکھیے گا پورے مہینے میں 30 میل آگے جا چکے ہوں گے. زندگی کا ایک اصول ہے، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں ہدایت کے میدان میں بھی جو اپنی موجودہ ہدایت پہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے. بلکہ ان کو اور آگے چلنا ہے. پھر اسی طرح وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہدایت کی طرف یا اپنے آپ کو گرو کرنے میں جو لوگ بڑھتے ہیں ان کی ایک خوبی کیا ہوتی ہے کہ ان میں اسٹیمنا بہت ہوتا ہے. عام لوگوں سے بہت زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے ان کا. اور تیسری بات یہ کہ وہ شدید محنت کے عادی ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک ان تھک محنت کرنے کا اللہ نے ڈالا ہوتا ہے یا وہ خود پیدا کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان میں اپنے جیسے کام کرنے والوں سے کچھ زیادہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. اور آپ اپنے آپ سے پوچھیے, آپ جو خواب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگنے کو تیار ہیں؟ آج بھی اپنے اوپر لیجئے اس چیز کو. اپنے آپ کو ادھر مت رکھیے اہدنا الصراط المستقیم پہ جدھر ہوں. ٹھیک ہے آپ کسی عالم کے گھر نہیں پیدا ہوئے, آپ حافظ قرآن نہیں بن سکے, تو ابھی زندگی تو موجود ہے. اور ایک اصول لکھے کہ وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے کلاس فیلو سے, اپنے ہم عمر لوگوں سے ایک قدم آگے بڑھ کے سوچتا ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. اور جو ہی آپ اپنے جیسے لوگوں سے ذرا سا ہٹ کر سوچیں گے نا, آپ پہ تنقید ہوگی, لوگ آپ کے اوپر نظریں ڈالیں گے, یہ کیا وہ کیا. ترقی کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ایک ڈفرینٹ سوچ ہونی چاہیے, دنیا سے آگے ایک قدم. یہ کوڈ بنا لیجئے آج کے بعد, اہدنا الصراط المستقیم پہ. آج آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, نہیں میں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. آج مجھے یہ کام نہیں آتا, کل میں کروں گی. آج مجھے ٹیکنیکل نہیں کرنا آتا, کل میں کروں گی. اور اپنے سے بہتر لوگوں میں شامل ہونے کی کوششیں کریں. اور ایک اصول یاد رکھیے زندگی میں, ہمیشہ اڑنے والوں کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ اڑنے والے آپ کو بھی تھوڑا سا اڑا لیتے ہیں. چھوٹے لوگ چھوٹی چیزوں کو اور بندوں کو ڈسکس کرتے ہیں, درمیانے لوگ درمیانی چیزوں کو, اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیاز کو اور نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں. ان میں بیٹھیے, آئیڈیاز ڈسکس کرا کرے, بیٹھ کر یہ نہ پوچھا کرے وہ خالہ کی بیٹی کی پپو کا کیا حال ہے اور اس کے گھر کے کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے زمانے کے بہتر اور قابل لوگوں میں بیٹھیے. چھوٹی سوچ والے کے ساتھ بیٹھ کر بندہ بھی ایک نٹ شیل میں بند چیز بن جاتا ہے. ایوائڈ کیجیے تنگ نظر, گھٹے ہوئے, نیرو مائنڈیڈ, ہمت ٹوٹے ہوئے لوگوں سے ایوائڈ کیجیے. پھر اسی طرح آپ اہدنا الصراط المستقیم چاہتے ہیں نا, تو آپ کو ہدایت چاہیے اپنے مینرز کو ٹھیک کرنے کی. اچھے اتوار سیکھیے. اور ایک چیز جس کو میں اپنے دل پہ باندھتی ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ صراط مستقیم پہ آگے سے آگے بڑھیں, اللہ آپ سے بڑے کام لے, تو قابل اعتبار بنے. بی ٹرسٹ وردی. جو قابل اعتبار ہوتا ہے نا وہ لاڈلا ہو جاتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں, وہ شاگرد استاد کا لاڈلا ہوتا ہے جو ٹرسٹ وردی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ہے بھروسے کا بندہ, وہ اس کے لاڈ بھی دیکھے گا, پیار بھی کرے گا. ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہو جاتے ہیں نا سنجیدگی کے ساتھ, تو پھر ہم اس کے ساتھ لاڈ بھی کبھی کر لیں تو وہ غصہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ سچا ہے. ایک اور اصول اپنے لیے رکھیے صراط مستقیم پہ آگے بڑھنے کا, کہ اگر دور جانا ہے تو سفر کو وقت پر شروع کریں. اور جو سفر وقت پر شروع ہو جاتا ہے نا وہ جلدی سے گزر جاتا ہے. ہم اچانک کسی دن جاگتے ہیں, مجھے کچھ کرنا ہے, میں کہیں پہنچنا چاہتی ہوں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتے, وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں. بڑے سے بڑے قدم دیکھتے جائیے اور اللہ سے یہ کہیے کہ اللہ مجھے بڑے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں کی ہدایت دے دے. ایک قدم بڑھ کر چلیں گے. کائنات میں اللہ کا اصول ہے کہ وہ بندے کو ضائع نہیں کرتا. اور دل بڑے کر لیجئے, دلوں کو بڑا کرنے کی ہدایت مانگیے. چھوٹے دلوں کے ساتھ بندہ کبھی امیر نہیں ہوتا. اور کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بڑا دل کرنا سکھاتے ہیں. کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر انتظار کر رہے ہو کہ امیر ہوگے تب بانٹو گے تو تم کبھی امیر نہیں ہوگے, ہاں اگر بانٹنا شروع کر دو گے تو امیر ہو جاؤ گے. کیونکہ جو کام آج شروع نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں ہوتا. آپ دوسروں کو دینے والے بنے, آپ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے, اللہ آپ کی ہدایت بڑھا دے گا. یہ تو قرآن میں بھی دلیل ہے, اصحاب کہف کی ہدایت کو بڑھایا تھا اللہ نے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نظریں رکھیں. تو ساری بات کا خلاصہ, عبادات کی ہدایت بہت عام ہے لیکن آپ کو مجھے معاملات کی ہدایت چاہیے، یہ نادار ہے۔ ہم نے مذہبی طور پہ اس دعا کو اہدنا الصراط المستقیم پہ بہت دفعہ مانگا، آج آپ کو مجھے سوچ ملی کہ دنیاوی طور پہ بھی تو ہدایت مانگی ہے، امت مسلمہ کی ہدایت مانگی ہے۔ رک جانا کوئی زندگی نہیں ہوتی، زندگی کا اصل مزہ چلتے رہنے میں، آگے بڑھنے میں۔ آج آپ فائدہ دیجئے، کل دوسرے آپ کو فائدہ دیں گے۔ آج آپ لوگوں کو آسانیاں بانٹیے، کل دوسرے آپ کو آسانیاں دیں گے۔ کسی سے کوئی اچھی بات ملے، چپ کر کے اس کو اپنے اندر ڈال لیجئے، اپنائیے، اور اپنے آپ کو ہر اس ایکٹیویٹی اور ہر اس سرگرمی سے الگ کر لیجئے جو آپ کو ضائع کر رہی ہے، جہاں سے ملنا کچھ نہیں، صرف ٹائم ویسٹرز ہیں۔ لسٹ بنا کر ایک ایک کو پھاڑ دیجئے، جو قدم اٹھائیں دیکھیے وہ آپ کو کدھر لے کر جاتا ہے، اور جو قدم اٹھایا ہے کیا واقعی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ آپ کا آج کا قدم کل آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف لے جائے، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کام برائے کام نہیں کرنا، عبادت برائے عبادت نہیں کرنی، اور دائرہ قرآن برائے دائرہ قرآن نہیں کرنا، بس کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کے اس تقریباً، میرا حال ہے اب تو آلموسٹ 1.5 گھنٹے ہو رہے ہوں گے، میرا گمان ہے اس بات پہ، اس میں اگر آپ کو کوئی نئی بات نہیں ملی تو آپ اگلا حصہ مت سنیے۔ اگر آپ کو کسی کی بات سے کچھ ملتا ہے تو لیتے رہیے، اور اگر آپ کو ہر سال مجھ سے ایک ہی دورہ قرآن مل رہا ہے تو آپ کو اگلی اس سال بھی کچھ نہیں ملنا، لے لے کے بھی آپ کہاں پہنچ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں آج بہت ضرورت ہے ہدایت کی۔ اور آخری بات پھر اس کے اوپر یہ ہے، جس کے اوپر آپ اور میں اپنے آپ کو باندھیں گے، کہ ہمیں نعمت ہدایت کی قدر کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اچھا کریں گے عبادات میں، معاملات میں، اللہ کی رضا میں، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانیاں کرتا جائے گا۔ کل کے خواب پورے ہو جائیں تو نئے خواب دیکھنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اب وٹ نیکسٹ، وٹ نیکسٹ۔ اور نعمت ہدایت کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں ہے، نعمت مسئولیت بن جاتی ہے ہدایت کی نعمت کے بغیر۔ اولاد نعمت ہے ہدایت کے ساتھ، آپ اولاد کی نعمت پائیں اور ہدایت نہ ہو تو اس کی صحیح تربیت ہی نہیں کریں گے۔ آپ کی صحت نعمت ہے، کب؟ جب آپ اس صحت سے اچھے کام لیں۔ یعنی کسی کی بات، جو ہماری بہت پرانی استاد تھی، وہ کہتی تھی کہ ہدایت میجک سٹون ہے، جس کے ساتھ لگاتے جو نا وہ نعمت بنتی ہے۔ مال ملا ہدایت نہیں ہے تو مال کو غلط ضائع کریں گے آپ، اولاد ملی تربیت غلط کریں گے، صحت ملی اس کو ضائع کریں گے، زندگی خراب ہوگی۔ نعمت ہدایت کے بغیر نعمت مسئولیت بن جاتی ہے۔ سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج ہمارے بھٹکنے کا معاملہ ہی یہ ہے، آج ہم بھٹک گئے، واللہ ہی بھٹک گئے۔ قانون کو رسم بنا لیا، دین صرف سیلیبریشن کا نام رہ گیا۔ ہماری معاش کہاں ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، نہیں پتہ۔ ختنے کے بغیر ہم نہیں رہیں گے، کہتے سنت ہے۔ کوئی کہہ دے مردے کو جلا لو، استغفر اللہ، ہم کیوں جلائیں مردوں کو، یہ تو نہیں ہم مانتے۔ لیکن شادی سنت کے خلاف، نکاح خطبہ نکاح پڑھا کے شادی ہوتی ہے، چند رسومات کو مکمل دین سمجھ لیا، آج یہ ہماری گمراہی ہے۔ تو آج ہماری معاش، ہماری تجارت، ہماری وراثت، رشتہ وراثت کہاں سے ہی بانٹتے ہم؟ تو مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ بہنوں کو ان کا حصہ دینے والوں میں رہوں، چچا بتیجے ایک دوسرے کا مال نہ کھا جائیں۔ ورنہ یاد رکھیے کہ دشمن تو کل بھی وہی تھے جن کی پھوکوں نے نبی کے دور میں مسلمانوں کو نہیں ہلایا۔ آج ہم کمزور ہو گئے، خس و خاشاک کی طرح اڑنے لگے، تو ان پھوکوں سے جس سے پتھر نہ ہلے، آج امت مسلمہ ہلی پڑی ہے۔ تو اللہ پھر ایسے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر شیر اور ببر شیر نہیں مسلط کرتا، ان کو کہتا ہے کہ پکڑو، تم ہی ان کو کھا جاؤ۔ آج آپ اور میں اگر خود ہدایت پہ آ گئے تو مت سوچئے کہ ہدایت پہ رہیں گے۔ سب سے بڑی بات، ہدایت آنے کے بعد چھن نہ جائے، یہ جملہ لکھیے اپنے پاس، یہ کبھی نہ سوچئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود سے ہدایت پہ آ گئی ہوں، کتنے موڑ آپ کی میری زندگی میں آج تک آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ آپ بھی بھٹک سکتے تھے، میں بھی بھٹک سکتی تھی، اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا رہا کہ آج تک الحمدللہ ہدایت پہ ہیں۔ کتنی ترغیبات تھی، کتنی ترہیبات تھی، اللہ نے آپ کو مجھے روک دیا نا۔ ابراہیم بن ندم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے دور کے بادشاہ تھے، ایک دن شکار کھیلنے گئے۔ شکار کے دوران کہیں سے ان کے لاشعور نے ایک آواز سنی کہ یا ابراہیم علی حاضہ خلقتا ام لہٰذا امرتا، اے ابراہیم، کیا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا یا تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ بس وہ دن تھا کہ ابراہیم بن ادم نے کہا یہ نہیں ہوگا، हिदायत मिल गई। अल्लाह आज आपको मुझे भी हिदायत देता है, चुनता है, ज़रा से इधर से उधर हो जाते हैं, फिसलने लगते हैं, अल्लाह ताला पकड़ लेता है। तो आपने मैंने इस तरह लेना है। दुआ करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे कि ये किताब, ये खूबसूरत सी किताब आपके मेरे लिए किताब हिदायत बने। इस शऊर के साथ ये दुआ भी मांगिए और अपने लिए भी कोशिश करेंगे हम सब कि ऐ मेरे मालिक, तो हमें इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सब से राज़ी हो। और इंशाल्लाह फिर बिल्कुल मुख्तसर सा सेशन हमारा आज दिल के बारे में। हम चलेंगे अनवाल कुलूब का दूसरा सेशन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अनवाउल क़ुलूब फिल क़ुरआनिल हकीम अयना क़ल्बुक। कुरान पाक की रोशनी में दिलों की किस्में क्या हैं और हमारा दिल कहाँ है? इस सीरीज़ का आज ये दूसरा हमारा सेशन है। पिछले सेशन में जो हमने देखा उसका ज़रा सा खुलासा करके चलते हैं। हमारी ये सीरीज़ क्या है कि दिल बदले तो नसीब बदले। हम में से बहुत सारे चाहते हैं कि हम खुश नसीब हों, और खुश नसीबी का ताल्लुक़ सिर्फ़ आखरत से नहीं है, दुनिया से भी है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी रोते धोते ही दिखे, क्योंकि किसी दौर में भी उनको कोई अच्छा बंदा नहीं मिला। बाद में पता चला कि दिल ख़राब था, लोगों के ऐप टटोलने वाला था, नेगेटिव सोचों वाला था। तो हमने पहली टिप देख ली थी कि अपने आप को बुरी सोचों से महफूज रखना है। फिर दूसरी बात हमने सीख ली कि हमने दूसरों की खूबी को सामने रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक अनवाल कुलूब में अल्लाह सुबहाना ताला के पसंदीदा दिलों की बात कर चुके। 8 किस्म के दिल जो रहमान को भी पसंद है और हमारा भी गोल है। और कल आप लोगों का जो ओवरवेलमिंग फीडबैक दिखा, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर, किसी ने कुछ करके और क्या कुछ भेजा है, इंशाल्लाह शेयर करेंगे अपने पब्लिक चैनल्स पे, आपको फेसबुक्स पे भी, और इसी तरह जो भी हमारे पास जो पब्लिक मीडियम्स हैं उसमें स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ शो की जाएंगी, ताकि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे। एक तो कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इन 8ों में से मैं किधर हूँ। तो आइए ज़रा दोहराते हैं और ये दुआ करेंगे कि रमज़ान के एंड तक भी और उसके बाद भी कोशिश करके हमने ख़ुद को इन सारे ही दिलों का मालिक बनाना है। मसलन अल कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब, अल कल्बुल मुखबित। थोड़ा सा कल की स्लाइड में या लोगों के सुनने में कोई मुबालगा था या मुगालता था किस तरह, तो लफ्ज़ क्या है? मुखबित। ठीक है, वो आयत में भी पढ़ दूंगी इंशाल्लाह जहाँ पे भी आया। फिर आगे देखिए, अल कल्बुल वजिल, अल कल्बु तकीश, अल कल्बुल महदिश, और अल कल्बुल मुतमाइन, और कल्बुल हैश। ये 8 किस्में हम देख चुके। आज हम देखेंगे अल्लाह सुबहाना ताला के नापसंदीदा दिल, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम में से किसी का दिल ऐसा ना हो कि अल्लाह उसको पसंद ना करे। आप देखिए, वो हस्ती जिसने हमें पैदा किया, अगर हम उसी की नज़रों में ना जचे तो फिर बाकियों की नज़रों में कहाँ जचेंगे? तो पहली किस्म का दिल अल कल्बुल मरीद, बीमार दिल। अल्लाह ताला के बंदों में से कुछ लोगों के दिल बीमार होते हैं, या दूसरी तरफ आप कह लीजिए कि कुछ लोग बीमार दिलों के मालिक होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनके दिलों में शक भी है, जिनके दिलों में खराबियां भी हैं, और ये वो लोग हैं कि जो अपनी जिंदगियों को बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं सिर्फ शक और इसी तरह की चीज़ों में डालकर, अपने आप को बिल्कुल अल्लाह से दूर करते हैं। तो वहुवल्लज़ी असाबहु मरदुन मिस्लु अश्शक्की वन निफाक वफी ही फजूरुम व मरदु फी शहवातिल हराम। कल्बे मरीज़ उस शख्स का दिल है कि जिसके दिल में बीमारियां हैं शक की, निफाक की, फजूर की। फजूर कहते हैं गुनाहगारी को, फाजर, काफिर और फाजर का लफ्ज़ उर्दू में हम बहुत बोलते हैं, वही लफ्ज़ है ये भी, कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है कि जो आप कह सकते हैं कि उसको मुख्तलिफ तरह से अल्लाह ताला का नापसंदीदा बना देती है। इसी तरह شہوت کا مرض ہوتا ہے، حرام چیزوں کا مرض ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیسے فرماتے ہیں؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرنے لگے، بلکہ بات سیدھی کرو. سورۃ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ تو جسمانی بیمار ہوتے ہیں نا، کچھ قلبی طور پہ بیمار ہیں. اور قلبی بیماریوں میں ایک تو جسمانی طور کی بیماریاں ہیں نا، مثلا انجائنا کا پین ہے، کلاٹ آ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، لیکن کچھ لوگوں کا مسئلہ ہی عورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے مسئلے ہی یہ ہیں کہ ان کو اچھی چیز نہیں بلکہ بری چیز زیادہ دکھتی ہے. تو ایسے لوگوں میں قلب مریض ہے وہ کہ جس کو اللہ نے کہا، اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں نہیں کہہ دیا، فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا. تو ایسے دل یاد رکھیے کبھی حق بات تک نہیں پہنچ پاتے. یہ وہ دل ہوتے ہیں کہ جو مریض بن جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک بیماری ہوتی ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کو رات جاتے کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے اور دکھتے ہوئے دکھیں گے. تو میں نے آپ نے اس نام کے بارے میں جانتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے روگ ختم کر دے. اس کو آپ روگی دل بھی کہہ سکتے ہیں، بیماریوں کے روگ ہیں. نبی کی بیویوں کو کوئی نہ چھوڑے تو کسی اور عورت کو کوئی کہاں چھوڑے گا، اور اللہ کو ایسے بندے کا دل کیسے اچھا لگے گا. پھر اگلی قسم القلب الاعمى، اندھے دل. وہو الذی لا یبصر ولا یدرک الحق والاعتبار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، حق کو پا نہیں سکتے، عبرت نہیں لیتے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں نعمتوں میں پلتے ہیں، ان کو نعمت نہیں دکھتی، اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کو چاروں طرف کائنات میں اللہ کے وجود کی نشانیاں دکھتی ہیں لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے. حق ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر دور نزدیک کہیں ایسی چیزوں میں کھونے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اور ایسے لوگوں کی مثال سورۃ حج کی آیت 46 میں ہے، افلم یسیر فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها یعقلون بها او آذان یسمعون بها یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اس کو پڑھ کر تو رونے کو دل کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی آنکھوں کا اندھا دیکھا ہو تو اس پہ بھی ترس آتا ہے نا، بلائنڈ، وہ بھی ٹٹول ٹٹول کے کچھ نہ کچھ تو پا ہی لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے دل اندھے ہو جائیں، ان کو حق نہیں دکھتا، اور ایسے لوگ ٹٹولتے ٹٹولتے ایک دن جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کیفیت کیا ہے کہ نہ سمجھتے، نہ سنتے، نہ دیکھتے. اللہ نے انسان کی ہدایت کا بہت انتظام کیا. الحمدللہ ہم نے اپنے آج ہی کے ربیہ قلبی کے سیشن میں ہدایت کی بات کی، اہتنا الصراط المستقیم میں. اب تو اس کے بعد ہدایت کی تڑپ لگ گئی ہوگی، فکر بھی لگ جاتی ہے، قدم قدم پہ، ایک ایک لمحے پہ اللہ کی ہدایت کی مجھے تو ضرورت ہے. صبح کی ہدایت، دوپہر کی ہدایت، شام کی ہدایت، نجی زندگی کی ہدایت، اجتماعی زندگی کی ہدایت. تو یہ جو دلوں کا اندھا پن ہے نا، یہ ہدایت سے خالی دل ہے. یہ مزے کرتے ہیں، یہ مستی چاہتے ہیں، ان کو زندگی بس جینے اور کھانے پینے کا نام لگتی ہے. اور ایسے لوگ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. اور اگلی قسم جس کو اسی سے ہم بعد میں جوڑ کے دیکھ لیں گے، القلب اللاہی. قلب اللاہی غافل عن القرآنی مشغول بالاباطیل الدنیا وشہوتها لا یعقل ما فیہا. قلب لاہی، لاہی وہی جس کو لہو الحدیث کہتے ہیں نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور سورۃ الانبیاء شروع کا حصہ دیکھ لیجیے، اقترب للناس لہو لاحیت قلوبہم. تو یہ کون سا دل ہے جو قرآن سے غافل ہے؟ آج دنیا میں آپ کو کوئی دکھتا ہے جو قرآن سے غافل ہے؟ فوجوں کی فوجیں دکھتی ہیں، بہت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو کہ اس کا خیال کر سکتے ہوں. عقل نہیں، سمجھ نہیں، مشغول کدھر ہے؟ دنیا اور دنیا کا بھی باطل، اس کی شہوتیں اور اس کا سب کچھ. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں رہنے والے لوگ ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت 3 دیکھیے گا، لاہیتن قلوبہم واسر النجوا الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون. دل ان کے تو دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی ان کے تو دماغوں پہ کچھ اور ہی سوار ہے. کئی دفعہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے، آپ پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں، خواہش سے بلائیں، پتہ نہیں کدھر مگن ہے، کیا مصروفیات ہیں. آپ کبھی سٹ پٹاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا اتنی مصروفیت ہے، بعد میں پتہ چلتا انہوں نے تو ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کی تو بات سنی نہیں. آج لاحیتن قلوبہم کی بہت ساری اقسام آپ کو مل جائیں گی. آنکھوں پہ پٹیاں، کانوں میں ڈانٹ، نہ کسی کی سنو نہ سناؤ. واک کرتے لوگوں کو دیکھیے، کانوں میں ان کے ہیڈ فونز اور آنکھیں ان کی اسکرین پہ. بسوں میں دیکھیے، ٹرینوں میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، اپنی سیلفیاں بناتے ہوئے لاحیتن قلوبہم، پتہ نہیں کن فکروں میں لوگ منہمک ہیں. آج اگر آپ کو دین کی فکر ہے، لوگوں کی اور اپنی ہدایت کی فکر ہے، اپنے اور دوسروں کے بچوں کی فکر ہے، تو خوش قسمت ہیں، کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا. آج آپ اس پٹری سے ہٹیں، پھر دیکھیے کتنے جراثیم چپکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو پھر سرگوشیاں کرتے سنا کریں کبھی، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا پاگل ہی ہو گئے ہیں، کریزی ہو گئے ہیں، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں پتہ ہے ہمیں، سب نے بھیجا پیغام. لاحیتن قلوب، ان کو فکریں ہیں شادیوں کی، ان کو فکریں ہیں بیاہوں کی، ان کو فکریں ہیں کھانے کی، سجنے کی، سنورنے کی، جسم کو بت بنا کے پوجنے کی. لاحیتن قلوبہم، تو قلب لاہی کدھر جائے گا؟ اللہ کے نبی کو جس نے نہ مانا وہ کسی اور بات کو کیا مانے گا؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے. اور پھر اگلا دل ہے القلب العاصم وہو الذی یکتم الشہادت الحق. یعنی القلب العاصم کون ہے؟ جو حق کی گواہی کو چھپا لے. کیونکہ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت 283 میں ہوا، وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز یعنی ڈاکیومنٹیشن لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. دل کا گناہ گار ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ حق اچھا نہیں لگتا. آج کتنوں کے پاس حق ہے لیکن وہ حق کو پسند نہیں کرتے آگے پیش کرنا. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی کتاب حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی جہنم حق ہے. تو زندگی میں حق کا ساتھ دیجئے. گو کہ باطل سے باطل پرست بھی خود کو حق پہ محسوس کرتا اور کراتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس حق کے ساتھ جوڑتا بھی، اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے جوڑ کے رکھے. اور اس کے بعد پھر اگلا دل ہے القلب المتکبر. کون ہے؟ مستکبر عن توحید اللہ و طاعتہ جبارم بکثرت ظلمہ و عدوانہ. اللہ کے ایک ہونے کے ساتھ تکبر کرنے والا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، جبار بنتا ہے، کثرت سے ظلم اور زیادتی اس کا شیوا ہے. اور اس کی دلیل سورۃ مومن آیت 35، اسی کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوث ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. کیا پتہ چلا, جھگڑے, بحثیں, بے سند باتیں. اللہ ایسے لوگوں کو متکبر لوگ کہتا ہے. اور یہ کون کرتا ہے جس کو اپنی خواہشیں اللہ کے حکم سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں؟ اس لیے آپ نے میں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا. اور آج آپ دیکھیے, بات بات پہ جھگڑے, بات بات پہ گمراہیاں. لوگ قرآن کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں, ایسا ہے تو ویسا ہے, یہ نہیں تو وہ نہیں, کیوں نہیں تو یہ نہیں. آج تو لوگ قرآن پہ جھگڑا کرتے ہیں, یہ صورت نکال دو, یہ آیت نکال دو, یہ موضوع ہے اس پہ بات نہ کرنا, اور ایسا نہیں تو ویسا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثالیں دیتا ہے کہ اپنے آپ کو خود یہ مشقت میں ڈالنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح سے پھر ناپسندیدہ دلوں میں سے چھٹی قسم, القلب الغلیظ. القلب الغلیظ, وہو الذی نزیعت منہ الرأفة والرحمة. یہ وہ دل ہے جس کے اندر سے کھینچ لی گئی رافت اور رحمت. قرآن پاک میں نا ون نازیاتی غرقا ون ناشتاتی نشتہ, اسی کو ذہن میں رکھیے. نرمی نہیں ہوتی ایسے بندے میں, سختی, کٹھور پن, اجڈ. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے جب ایسا بندہ کہیں بڑا بنا دیا جائے, اللہ کی بنا جا کر کسی بندے کو مارا ہے تو مارائے گا, اتنی اکڑ اس میں, اتنی سختی. حالانکہ دیکھیے اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, 159 سورۃ آل عمران, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے پیغمبر, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فطری اور طبعی نرمی تھی. لینتا, لینا, کھجور کے کچے گوشے کو کہتے ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے, دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہ خوبی لازم ہے. جو دلوں کو مہلے وہی فاتح زمانہ, ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم. اس کے بغیر امت مسلمہ کے پودے پہ بہار نہیں آ سکتی. آج بھی اگر آپ ارد گرد دنیا میں دیکھ لیجئے تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں بہت ساری مل جائیں گی کہ جن کو پڑھتے اور سنتے وقت انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ انسانوں کے دلوں سے نرمی کیوں چلی گئی. کہتے ہیں کل کوئی گرتا تھا تو لوگ اس کو اٹھانا چاہتے تھے, آج لوگ اس کی سنیپی اور سیلفی بنا کر فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے یہ خبر دی. کیا یہ دل کی سختی نہیں ہے؟ دل کی سختی, یاد رکھیے, انسانوں سے دور کر دیتی ہے. پتھر ہیں, پتھروں کی محبت دلوں کو سخت کرتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں ہیرے ڈائمنڈ کیا ہے, پتھر ہے. فرنیچر کیا ہے, لکڑی ہے نا. تو سخت چیزوں میں اور مادہ پرستی میں, یعنی مٹیریلسٹک اپروچ میں انسانوں کا دل سخت ہوتا ہے. کل تک کوئی دنیا سے جاتا تھا لوگ کہتے تھے ہائے آندھی چلے گی, کوئی طلاق ہوتی تھی کہتے تھے زلزلہ آ جائے گا, اور نہ جانے کیا کچھ ہمارے بڑوں نے باتیں بنائی تھی نا. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ارد گرد یہ چیزیں نہیں ہیں. آج بھی ہم مسلمانوں کو اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کی باتیں تو پڑھ بھی نہیں رہے, باتیں تو ساری ہماری اپنی ہیں. तो जितना ज़्यादा आप इस मौजू को पढ़ते और सुनते जाते हैं, आपका दिल इस चीज़ पे राज़ी हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हम सबको बेहतरीन तरीके से मुसलमान बनाकर इतनी प्यारी किताब देकर हम पर रहम किया। अब ज़रा आप सारे नामों को इकट्ठा देखिए, आपको दिखाते हैं। 6 नाम आज पढ़ें, आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन सब को ज़रा जज्ब करते हैं, यानी अल्लाह सुबहाना ताला के नज़र में, अल्लाह के कलाम से देखें तो वो दिल जिनसे अल्लाह ताला खुश नहीं है, उसमें सबसे पहला नाम आज हमने पढ़ा अल कल्बुल मरीद, बीमार दिल। अपना जैसा लीजिए, क्या मेरा दिल बीमार तो नहीं है? क्या वाकई मैं दिल की रोगी तो नहीं हूँ? और जब कोई बीमार होता है ना, तो उसका इलाज भी किताब में है। यानी आप इन 5ों या 6 किस्मों को देखते हुए आप फील करेंगे कि सब का इलाज क्या है। शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सूरत यूनुस की आयत 57-58 में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान शिफा है उन चीज़ों की जो तुम्हारे दिलों में है। तो इसको सुनते पढ़ते हुए दुआ कीजिए अपने लिए भी, और अगर आप अपना दिल माशाल्लाह 7ों 8ों किस्मों में से पा चुके तो आप फिर उनको ढूंढिए। ये रमज़ान, ये कुरान, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को देता है कि जिनके अंदर अभी हिदायत की रोशनी नहीं आई। ढूंढिए, शक है किसी को? निफाक दिखता है, फजूर है, शहवत है, हराम है, तो इलाज करना है कि उसकी बीमारियां खोल खोल के बतानी है? कोशिश कीजिए, तड़पिए। और मैं देख रही हूँ माशाल्लाह इर्द गिर्द लोगों की कोशिशें, और जो भी कोई कर सकता है कैसे तड़प रहे हैं लोग कि आप इस कलाम से एक दफ़ा जुड़ जाएं, इस कुरान को सुन लें, इसको समझ लें। और आपका मेरा भी यही काम होना चाहिए। लिए दिए मत रहिए, आप तक ये पैगाम पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप इसको आगे पहुँचा दें। पहले तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने आपको पहुँचाया। आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल नए नए सुनने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता था पहले और अब पता चल गया, अब आप किसी का जरिया बने। चंद दिन रह गए हैं, जब पहला वारा शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर लोगों को कहेंगे ना, तो कहेंगे अच्छा एक पारा मिस हो गया, ओके हम अगले साल सुनेंगे। ठीक है, अल्लाह मोहलत दे, लेकिन इस साल 29 तो सुन ले। नहीं, फिर मैं शुरू से ही सुनती हूँ। अच्छा रिकॉर्डिंग है वो सुन ले। नहीं, फिर मज़ा नहीं आता। ऐसे लोगों तक प्यार से, मोहब्बत से, करीब से उनके ऐसे अपने आप को लाइए कि उनके दिल में भी ज़िंदगी का एक रंग मिले। कि आप किसी अपने घर के इर्द गिर्द किसी बीमार को देखें, और ख़ास तौर पर वो हार्ट अटैक का मरीज़ हो, किसी को दिल का दौरा पड़े, चले आपके नेबर्स में, आपके हमसाए में, ऊपर नीचे आराम से बैठे रहेंगे। आपके घर में कोई बीमार हो तो चैन पड़ता? तो जब दिलों के मरीज आपके मेरे इर्द गिर्द हों तो हमें चैन कैसे आएगा? फिर इसके बाद देखिए कल्बुल आमा, हिदायत से दूर अंधे दिल, जिनको शायद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती अपने अंदर। वो कहते हैं हम क्या करें फिर? क्या वो लोग जिनको ना दिखता है, ना हक को पाते हैं, ना इबरत लेते हैं। देखिए कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, इबरत बहुत थोड़ी है आज भी। ये जितनी चीज़ें बग़ैर मेंशन किए, बग़ैर किसी के ऊपर कोई जजमेंटल फ्रेज दिए, ये हैं दौरे कुरान के मुस्तहिक। कुरान का पानी हल्का हल्का, कोई उसमें डूज नहीं आते ज़्यादा, डोंट्स नहीं आते, मोटी मोटी बातें। और इस तरह का दौरे कुरान बहुत सॉफ्ट है, सिर्फ मुहासबा, सिर्फ आप उसमें तदब्बुर करें, अपने आप को झांकें, अपनी तस्वीर है। हम दिल की बातें करें और दिल के मरीज़ बाहर रह जाएं, ये नहीं हो सकता। तो अपनी कोशिशों को हम सब ने तेज़ करना है। फिर कल्बुल्लाही, ख़ास तौर पे इस पे मैं कहूँगी, वो लोग जिनके पास मकसद नहीं है, यूथ भी है, बूढ़े भी हैं, दो चीज़ें इसमें आप डाल लीजिए। लहव शामिल हो जाता है जवानी में, और बुढ़ापे में जब कुछ नहीं, रिटायरमेंट भी है और कोई पास बैठता नहीं, तो फिर लोग दोबारा फिर लहवियात में। आज हमारे दौर के बूढ़े भी ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, इल्ला माशाल्लाह, कोई ख़बरों के नाम पे, कोई ड्रामों के, कोई फिल्मों के। कब्र में टांगे हैं, कुरान तो सुनिए। नहीं, ये बोर रख 2 घंटे, तो आप तो वो 3 घंटे की भी देख चुके। प्यार से, मोहब्बत से, लाड से। आप देखिए कि इस दफ़ा अनवानजीर अशीरतकल अक़रबीन इस प्रोजेक्ट पे भी काम कीजिए, साथ लेकर चलिए। प्यारों के बगैर जन्नत अच्छी नहीं लगेगी। क्या लगे अगर जन्नत में जाएं तो पता चला फलां बच्चा तो आया ही नहीं, बेटी नहीं आई, माँ नहीं आई, बाप नहीं आया, बीवी पीछे रह गई, शौहर पीछे रह गया, भाई नहीं आया, वो प्यारी दोस्त नहीं आई। रोइए, तड़पिए, प्यार से, मोहब्बत से, खिला के, पिला के, गुस्से से, लाड से, जहाँ आपका प्यार चलता है वहाँ, लेकिन लोगों को इस किताब पे लाए। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है हम सुन रहे हैं, तो ठीक है छोड़ दीजिए, नहीं सुनना उनको तो नहीं सुनने पे मजबूर करें, लेकिन जब आप खुद कोई खाते हैं चीज़ और उसका टेस्ट अगले को आ रहा होता है ना, खुशबू आती है, तो वो खुद भी आने लगते हैं। फिर इस तरह कलबुल आसिम, शहादत को छुपाने वाले, गवाहियों को छुपाने वाले, और फिर ये दिल गुनाहगार हो जाते हैं। आज आप देखिए कितना झूठ है, बात बात पे लोग झूठ बोलते हैं, ज़मीन का एक टुकड़ा उनको झूठ बोलने पे तैयार कर देता है, विरासत में एक से दूसरे को महरूम करने पे, हक तलफियाँ करने को लोग तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर अल-क़ल्बुल मुतकब्बिर, बज़ाहिर बड़े छोटे भी लगते हैं, कई लोग मस्कीन लगते हैं, लेकिन जो अल्लाह की तौहीद से मुस्तकबिर है वो कभी भी हिदायत पे नहीं हो सकता। और इसी तरह से आप देखिए कि क़ल्बुल ग़लीज़, अल-क़ल्बुल ग़लीज़, राफ़त और रहमत ही नहीं है दिल में। तो इंशाल्लाह गोल करके बना कर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, और हम महसूस करते हैं कि जब कोई बात दिल से की जाए तो वो कहते हैं कि दिल में असर, वो जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। आपका मेरा प्यार, आपके मेरे दिल की नरमी और तड़प सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की कि हम लोगों को इस किताब की तरफ लेकर आएं। और याद रखिएगा कि जहाँ ख़जाना होता है ना, कुछ पूंजी रखी होती है, हमला वहीं होता है। जब आपके दिल में हिदायत की पूंजी आने लगती है ना, तो चारों तरफ से हमले होंगे। आप अगर हिदायत लेकर निकले हैं, ये कभी नहीं हो सकता आपकी मुखालफत ना हो, मान लीजिए फिर हिदायत ही नहीं। और आपको तो हमला कौन करता है? अपने घर वाले, माँ बाप, नरम जुबानों से, मोहब्बत से, प्यार से, अपने बन के मलामतें करेंगे आपकी, और आपने करने वाला तखाफून अलौमत अलाएं। तो एंडिंग वर्ड्स हैं आज के पूरे सेशन पे, हिदायत की बात पे आज का पूरा सेशन डिपेंड करता था, जिसमें हमने दिलों की ये बातें भी पढ़ ली। हिदायत एक दफ़ा मिल जाए तो ज़रूरी नहीं कि मिली रहेगी, हाथों से फिसलती है ये बार बार। आपने इर्तदाद का नाम सुना होगा, फला मुर्तद हो गया, सूरत माईदा में जिक्र है, मैं यरतद दान दीन ही, वो इर्तदाद है इस्लाम से फिरना। इसी तरह हिदायत से फिरने को मानवी इर्तदाद आप कह सकते हैं। कुरान में कहते हैं अल्लाह ताला, आमनु सुम्मा कफरू, सूरत माईदा की आयतें हैं, आमनु सुम्मा कफरू, फिर आमनु फिर कफरू, आंख मिचोली है कुफर और ईमान की। जब तक आखिरत का शौरी फैसला हम नहीं करते, हिदायत खतरे में। और बाद में क्या कहते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाब नार, दुआ भी गलत समझी, दुआ तो मांग ली ना। हालांकि याद रखिए, बगैर हिदायत के कोई नेमत हसना नहीं हो सकती। जब हम अपनी तरजीह दुनिया को कर लेंगे आखिरत की बजाय, ज़रूर हिदायत छिनेगी। और हिदायत छिनती है बेहतरीन से बेहतरीन लोग भी, कई दफ़ा दुनिया में इस तरह होते हैं, तो जैसे हिदायत लेनी मुश्किल है ना, सीढ़ियों पे चढ़ना, इसी तरह ऊपर खड़े नहीं आप हो सकते, फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आप इस तरह से चोटी पहाड़ की लेकर मिडल में खड़े नहीं हो सकते, फिर या तो आप हिदायत को बढ़ाएंगे या पीछे। दुनिया अच्छी मिल जाए बहुत अच्छा है, आखिरत मिल जाए अच्छा है, लेकिन दुनिया की कीमत, दुनिया को आखिरत की कीमत पर लेना ये अच्छा नहीं है। आखिरत के साथ सूखी रोटी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने आप को हर एंगल से देख सकते हैं कि हम हिदायत पे हैं कि नहीं। चलने का अंदाज, रुकने का अंदाज, स्काफ पहनने का, कपड़ों का अंदाज, एक एक चीज़ के साथ आपको आपको महसूस होगा। कभी कभी सिर्फ चंद लाल नोट हमें हिदायत के रास्ते से हटाने का जरिया बन जाते हैं। चार पैसे कमाने का लालच देकर बाज़ दफ़ा लोग हमसे हिदायत भरी किताब पीछे कर देते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें हमारी नानियों और हमारी दादियों जैसा बना दे। आज सुबह हमारा जो सेशन था, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, जोहराबाद स्कूल में जो नूरुल्ला नूर की साथी फारिग हुए हैं, तो उनके साथ था। तो उनको मैंने ये आज एक बात दी थी, क्योंकि उस वक्त मैं तैयारी भी हिदायत भी कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि हिदायत के नाम पर अपनी नानियों और दादियों को फॉलो करें, उन जैसी हया, उन जैसा सलीका, उन जैसा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। उन पर ना कमाने का बोझ था, और ना उजाड़ने का बोझ था। मर्द पैसा देते नहीं थे, चीज़ें लाकर देते थे, और वो ना बाज़ारों की जीनत बनी ना आज परेशानी हुई। आज की औरत के लिए हिदायत की बहुत ज़रूरत है। कैसी ऑफ़र्स मिलती हैं जब आप करते हैं, तो हिदायत के रास्ते पर जो ऑफ़र्स आएंगी उनको रिजेक्ट करते हुए अपने दिलों को इन सारी ख़राबियों से अल्लाह ताला से दुआ करके हमने बचना और बचाना है। और एक आखिरी सवाल जो शायद आपके जहनों में ना आया हो, लेकिन मैं खुद ही देख के आपको बात को पूरा करती हूँ, हमारे पास 2 मिनट हैं। करें क्या इनफ़िरादी हिदायत, अपनी ज़ाती इस्लाह की कोशिशें करनी हैं या फिर इज्तमाई काम करें? सवाल समझें, इनफ़िरादी हिदायत वर्सेस इज्तमाई हिदायत। इनफ़िरादी क्या अपनी नमाज, रोज़े, फ़र्ज़, फिर सुन्नत, फिर नवाफिल, मस्जिद और इसी तरह से उमरा और हज। लिखिए, जब इस्लाम गालिब होता है, जब दीन गालिब हो जाता है, तो लोगों के दिल मस्जिदों में मुअल्लिक़ हो जाते हैं। फिर मस्जिद से जो प्यार होता है वो सदमे से नहीं होता। फिर आप ज़ाती इबादात करें। आपका काम जिस वक़्त ख़त्म हो गया गलबा दीन के अंदर अपना हिस्सा डालने का, उस वक़्त ज़ाती इस्लाह। इसके बरक्स जिस वक़्त अभी दीन ही गालिब नहीं है, अभी लोग वही 3 बातें लिख कर रख लीजिए दिल दिमाग में कि मुआशी, मुआशरती और सियासी हिदायत से ही दूर हैं। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें जिस सोसाइटी में पल रही हैं, अभी वहाँ वो पौधा लग ही नहीं सकता जो हम बच्चे को सिखा के, बना कर, पढ़ा कर लगाना चाहते हैं। तो फिर उस वक्त इज्तमाई हिदायत के लिए कोशिश कीजिए। जब दीन गालिब होगा तो ज़ाती हिदायत, ज़ाती इबादत, ज़ाती इतकाफात, ज़ाती उम्रे और हज और जो कुछ। लेकिन जब दीन गालिब हो रहा हो तो फिर जिद्दोजहद, फिर तन मन धन वक्त स्किल्स, फिर आपकी सारी कोशिशें इज्तमाई हिदायत को पाने के लिए होंगी। फिर ईमान का सबसे बड़ा मजहर जिद्दोजहद होगी। जो लम्हा भी इसके सिवा आपका यूज़ होता है वो इकराह है। बस क्या करें, खाना भी है, पकाना भी है, दिल इधर पड़ा हुआ है। तो आज के दौर 2021 2021 की हिदायत क्या है? दूसरों को हिदायत पर रखने की जिद्दोजहद। अल्लाह ताला आपको मुझे इसमें कबूल फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।